ऐसा देखा जाता है कि कोई भक्त तो जीवन का लाभ ले लेता है और कोई इस एक जीवन को व्यर्थ गंवा देता है भक्ति में आने के उपरांत भी। एक तो जीवन का लाभ ले लेता है और एक नहीं ले पाता। तो ऐसा क्या कारण है, ऐसा क्या स्पिरिचुअल प्रोसेस है जो कि एक व्यक्ति जानता है इसी वजह से वह जीवन का लाभ ले पाता है और श्यामा श्याम के श्री चरणों की सेवा प्राप्त कर पाता है और एक उससे वंचित हो जाता है। ऐसा क्या स्पिरिचुअल प्रोसेस है, ऐसी क्या स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी है, यह आज समझने का चेष्टा करेंगे गुरु कृपा से। ये जो विषय है इस विषय पे सभी संप्रदायों में सभी साधक पढ़ते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, चर्चा करते हैं, परंतु एग्जैक्टली तत्वतः नहीं ज्ञान होने के कारण इसका लाभ नहीं ले पाते इस विषय का। तो आज हर संप्रदाय में जो ये विषय एक प्रकार से ज्ञात है और एक प्रकार से अज्ञात भी है, ज्ञात होने के बाद भी अज्ञात है, तो इस विषय पे आज हम विस्तृत रूप से व्याख्या करेंगे। जो हमने कम से कम एक दशक में तो शायद विस्तृत व्याख्या नहीं करी है, पर आज का सत्र जो है इससे आप सब भक्त जो हैं, जो सुन रहे हैं, जो आश्रित हैं, वह सब तो लाभ ले ही पाएंगे और अन्य संप्रदायों के भक्त भी इससे लाभ ले पाएंगे हमारे जाने के बाद भी। ये सत्र समाप्त होने के बाद तो ले ही पाएंगे, जब हम नहीं भी होंगे तब भी ले पाएंगे। इतना महत्वपूर्ण सत्र है और संभवतः इस सत्र के ऊपर पुस्तक भी लिखी जाएगी। ये इतना गूढ़ गंभीर व महत्वपूर्ण तत्व है। आप सब जो सुन रहे हैं प्रार्थना हमारे साथ षड गोस्वामी गोविंद से, श्री रामनोत्तम दास ठाकुर से, श्री प्रबोधनाथ सरस्वती ठाकुर से और अन्य आचार्य गणों से, श्री रामानंदास बाबाजी महाराज से, अपने अपने गुरुदेव से, कि आज का जो सत्र है वह हमारे हृदय में बस जाए। तो प्रार्थना पुस्तक में भी सुधा कणिका व्याख्या में वर्णन आया है ठाकुर वैष्णवगण प्रार्थना में कि जैसे हमने बताया कि कोई जीवन सार्थक कर लेता है और किसी का जीवन व्यर्थ चला जाता है, तो इस व्याख्या में सुधा कणिका व्याख्या में वर्णन आ रहा है कि मानव भजन साधन विषय खूब सुनता है। क्या बता रहे हैं व्याख्याकार, खूब सुनता है भजन साधन की बातें, स्वयं ग्रंथ आदि भी पढ़ता है, पढ़ता है, सुनता है और कोशिश भी करता है भक्ति करने का, पर निष्ठापूर्वक भजन करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं कर पाता। प्रेम प्राप्ति तो दूर की बात है, पहले निष्ठा होनी चाहिए भजन में, फिर निष्ठा से भजन करेंगे तो प्रेम प्राप्ति होती है। तो यहां वर्णन कर रहे हैं कि भजन साधन का सौभाग्य प्राप्त नहीं कर पाता, पढ़ने खूब सुनने के बाद, सुनना नहीं खूब सुनने, दशकों सुनने के बाद भी वे सौभाग्य लाभ नहीं कर पाता। तो क्यों नहीं लाभ कर पाता, किसी में आगे बता रहे हैं, इसी कारण से महत कृपा परम आवश्यक है। गुरुजनों की, महात्मा जनों की कृपा जो है इसी वजह से परम आवश्यक है। आगे एक और व्याख्या में वर्णन आता है कि हम सब जो हैं भजन कर रहे हैं, हरि को प्रसन्न करने की चेष्टा कर रहे हैं, परंतु ये जो संसार के विषय हैं ये अपनी ओर आकर्षित करके हमें श्री कृष्ण से युवा सरकार से बहिर्मुख कर देते हैं। हमारी वृत्ति संसार के घसीट चली जाती है साधन करने के बावजूद भी। तो इसलिए बाबा जी बता रहे हैं कि महत कृपा परम आवश्यक है। अब हम अब स्टेप बाय स्टेप हर चीज को एक के बाद एक जो हम बोल रहे हैं उसको रिलेट करेगा। पहले बताया गया आवश्यक है, अब बताया जाएगा कि क्यों आवश्यक है। सुदर्शनी का व्याख्या में अन्यथा वर्णन आ रहा है कि ये जो माया है, मैं और मोर तोड़ते हैं माया, मैं ये शरीर को दुलार करना, भगवान को दुलार ना करके, मोर भगवान को अपना ना मान के संसारी मनुष्यों को अपना मान लेना, और खाने में आसक्ति जबकि हम कण हैं, खा नहीं सकते, इस प्रकार के इतने अनर्थ हैं जो सब माया के घेरे में आते हैं। तो इस माया से पार करके ही, इनसे निवृत्त होके ही हमें युवा सरकार की सेवा प्राप्त हो सकती है। और शरणागति के भगवत चरणों में शरणागति के अलावा इसका कोई उपाय नहीं है। ये श्री कृष्ण स्वयं अपने श्रीमुख से भगवत गीता में वर्णन करते हैं, देवी है ऐसा गुणमयी मम माया दुरतया मामे ये प्रपद्यंते मायाम एताम तरंती थे। ये जो गुणमयी माया है ये बहुत शक्तिशाली, मेरी शक्ति है ना, जब आज करके प्राइम मिनिस्टर कहने की शक्ति इतनी शक्तिशाली होती है तो जो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक की शक्ति है वो तो कितनी शक्तिशाली होगी, जिसके देवी देवता जो हमारे इंद्रियों पर वास करते हैं वो भी भ्रमित रहते हैं, इतनी शक्तिशाली शक्ति है। भगवान खुद बता रहे हैं, हमने कहा ना क्या प्रोसेस है वो, जिससे क्या टेक्नोलॉजी है स्पिरिचुअल, जिससे कोई तो पार हो जाता है और कोई नहीं हो पाता। क्या है वो, मामे भी ये प्रपद्यंते, जो मेरी शरण ग्रहण करते हैं, मेरा आश्रय ग्रहण करते हैं। श्री कृष्ण कह रहे हैं हे अर्जुन, मेरी इस मोहिनी गुणमयी माया ये बहुत मुश्किल से पार हो सकते हैं, लेकिन जो मेरा आश्रय ग्रहण करते हैं वो इस माया सागर को पार कर सकते हैं। हे अर्जुन, पार कर सकते हैं। तो हमें अपने आप को बोलना चाहिए कि हे शिवम, जैसे श्री कृष्ण बोल रहे हो गीता आपको ही, हे शिवम तुम इस माया सागर को पार कर सकते हो। इस तरह अपना नाम लेके हम बोले कि हे अमुक अमुक, अपना नाम ले कि हाँ आपसे श्री कृष्ण वहां पार कर सकते हो, कैसे मुझे शरणागत होगी। अच्छा तो कैसे शरणागत हो जा रहा है, वही आगे सुदर्शनी का व्याख्या में बताया जा रहा है कि शरणागत होने के लिए भी भगवान को भगवान की करुणा की आवश्यकता है। ऐसे शरणागत होना संभव नहीं है, भगवान की करुणा चाहिए। अब आगे क्या बता रहे हैं, इतना सुंदर तरीके से वर्णन हमने हर संप्रदाय के सभी ग्रंथ पढ़ रहे हैं, पर जितना गूढ़ गांधीर्य इस सुदर्शनी का व्याख्याकार श्री गुरुदेव की व्याख्या से प्राप्त होता है, हमें विश्व में कहीं पे भी प्राप्त नहीं होगा। और हमारे से जिसको जो प्राप्त होगा हमारे गुरुदेव की झूठन ही प्राप्त होगी। तो जिनको श्री आनंददास बाबा झूठन चाहिए वह यहाँ पे जुड़ सकते हैं और झूठन प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पास कुछ नया नहीं है, हमारे पास सिर्फ षटगुरु स्वामी का गुरुदेव का जो झूठन है वो आपको देने के लिए वही दे रहे हैं। और नई इसलिए लगती है क्योंकि ये जो ग्रंथ है ये चिन्मय है, नरोत्तम दास ठाकुर के हो या सुदर्शनी का व्याख्या हो, तो ये चिन्मय है, ये स्वयं से समझ नहीं आ सकते, इसके लिए भजन चाहिए। और ये जो रहस्य हैं ग्रंथों के ये महात्मा के हृदय में ही वास करते हैं। ये स्वयं से समय आने है नहीं, तो हम गुरु कृपा से जो सब प्रकाशित है हृदय में वही आपके हृदय में प्रकाशित हो। इसी चेष्टा के साथ ये सत्र ले रहे हैं और चाहेंगे कि पूरा विश्व इससे लाभान्वित हो इस सत्र से। तो शरणागति एकमात्र उपाय है। शरणागति कैसे होगी ये बताया कि भगवान की करुणा से। भगवान की करुणा कैसे होगी बता रहे हैं कि ये करुणा भगवान ने अपने हाथ में नहीं रखी, ये अपने हाथ में ना रख के अपने भक्तों को सौंप रखी है। आप करुणा करो इन पे, वह स्वयं नहीं कर रहे करुणा, ये उनकी विधि है, उनका विधान है। तो जो भगवान की करुणा चाहते हैं वो करुणा जो है जिनके पास है वहां से प्राप्त हो। जो भगवान की करुणा है वे भक्तों की जो भक्तों की कृपा है उसको वाहन बनाकर हमारे हृदय में संक्रमित होती है। ये करुणा जैसे जैसे अभी कोविड है ये संक्रमण का रोग है, किसी के मुख से हमारे अंदर में प्रवेश कर जाता है। उसी प्रकार से जो कृपा है ये भक्तों की करुणा, भगवान की करुणा जो है भक्तों की करुणा के रूप में ही हमारे हृदय में संक्रमित होगी। ये संक्रमण की बीमारी है, ये संक्रमित होती है पर सबको नहीं होती है। ये होती है उनको जो कि चेष्टा करते हैं गुरु और वैष्णव की कृपा प्राप्त करने का। उनके अंदर ये भगवान की करुणा ही संक्रमित होती है भक्तों की करुणा को वाहन बनाकर। भगवान तो चाहते ही जो इस संसार में जीव है, जो परिवार खाने में, सेंशुअल डिजायर्स में, नाम में इसमें डूबे पड़े हैं, इस सब से संसार में उन्मुख होए पड़े हैं, भगवान से बहिर्मुख होए पड़े, ये विपरीत हो जाए। इसीलिए इसी व्याख्या में बताया जा रहा है कि रूपे पाइबो सेवा की व्याख्या में कि भगवान चाहते हैं कि जीव सेवा पाकर धन्य हो सके। भगवान चाहते हैं ये कि जीव सेवा पाकर धन्य हो सके, इसीलिए श्री हरि की साक्षात करुणा, श्री हरि की साक्षात करुणा, करुणा से ही शरणागति होगी। तो श्री हरि की साक्षात करुणा श्री गुरु और वैष्णव की मूर्ति धारण कर विश्व में विचरण कर रही है। ये जो गुरु और वैष्णव गण हैं ये कृपा की मूर्ति है, कृपा विचरण कर रही है, चल रही है विश्व में। हम प्रार्थना करते हैं भगवान से कि कृपा दो। अरे जब आप प्रमाणिक संप्रदाय से जुड़ गए, प्रमाणिक परिवार में जुड़ गए, नित्यानंद परिवार से जुड़ गए, ये सौभाग्य सब हरे कृष्ण जप करने वाले को प्राप्त नहीं होता। हर कोई सही परिवार से अखंड 500 वर्ष पुरानी परंपरा से नहीं जुड़ पाता। हम सब लोग जो जुड़ गए हैं उनको ये नहीं बोलना कि कृपा करो, कृपा हो चुकी है और ये कृपा मूर्तिमान रूप में श्री गुरु और श्री वैष्णव के रूप में विश्व में विचरण कर रही है। अब कृपा मांगनी नहीं है, ये समझना है, कृपा का उत्सव बनाना है। कृपा तो हो चुकी, कृपा मांगे वो जिसमें कृपा ना हुई हो, ईश्वर से वो कृपा मांगे। अब ये ज्ञान को हम इसलिए प्रारंभ में बोला तत्वतः महत्व ना समझने के कारण, गुरु वैष्णव की महिमा ना समझने के कारण कुछ लोग लाभ ले जाते हैं जीवन का और कुछ लोग वंचित रह जाते हैं। तो अब कृपा हो चुकी है, पहले तो ये समझ लें कैसे, क्योंकि कृपा की भगवान ने कृपा की एक मूर्ति बना दी। जैसे कि पत्थर की मूर्ति बनाते हैं कुछ लोग सोने की मूर्ति बनाते हैं। फिर एक मूर्ति होती है ना, कि देखिए किसकी मूर्ति है, पत्थर की, ये किसकी मूर्ति है, सोने की, ये किसकी मूर्ति है, पीतल की। और ये श्री गुरु किसकी मूर्ति है, कृष्ण कृपा की मूर्ति है, कृष्ण कृपा मूर्ति। वैष्णव क्या है, वो कृपा की मूर्ति है। तो कृपा की मूर्ति जो है भगवान ने करुणा करने के लिए जीवों पर श्री गुरु और श्री वैष्णव का रूप उस कृपा को धराया है और अब वो विचरण करते हैं विश्व में। और आगे व्याख्या करते हैं कि जो शास्त्रों में श्रद्धा रखते हैं वह साधक श्री गुरु और श्री वैष्णव की सेवा की अतिशयता से श्रवण कीर्तन आदि शुद्ध भजन संपन्न कर पाते हैं। जब श्री गुरु श्री वैष्णव की सेवा करी जाती है अतिशयता, अतिशय मतलब सीमा रहित होकर जब सेवा करी जाती है तो उनकी जो कृपा होती है उस कृपा से शुद्ध भजन होता है। कोई बोले हमें समझ नहीं आता भजन करना कैसे है, हम बताते हैं कैसे करना। गौरांग महाप्रभु ने बताया है चैतन्य चैतन्य वर्णित है बाह्य अंतर इहार द्वैता साधन, बाह्य अंतर दो ही साधन है, बाहर से श्रवण कीर्तन करें और दूसरा निस्वरूप में रहकर श्यामा श्याम की सेवा करें। श्रवण कीर्तन आदि स्मरण आदि ये सब कैसे होता है, ये स्वयं से नहीं होता, ये भगवान की करुणा से होता है। भगवान की करुणा श्री गुरु श्री वैष्णव के रूप में है, उनकी सेवा से नहीं उनकी अतिशय सेवा से जब वो प्रसन्न होते हैं उनकी प्रसन्नता से हमारे अंदर वो आध्यात्मिक शक्ति आती है जिससे शुद्ध श्रवण कीर्तन होता है। ये प्रयास से नहीं होता शुद्ध श्रवण कीर्तन और लीला में प्रवेश, ये प्रसाद से होता है। प्रसाद मतलब कृपा, प्रसाद मतलब लड्डू नहीं, प्रसाद मतलब कृपा। ये प्रयास जन्य नहीं है श्रवण कीर्तन शुद्ध रूप से स्मरण करना, ये प्रसाद जन्य है। हमने ये श्लोक सुना हुआ है जननी जनक बंधु सुत दारा तनुधन, ये सब सबने सुना है। अभी तक इस समय क्या है, ये राइम है सबके लिए, जननी जनक बंधु सुत दारा। तो ये राइम नहीं है, जीवन में जब तक ये घटित नहीं होगा तब तक अनुराग नहीं होगा। ताके ममता जाके उनका ताक बटोरी, सारी जो ममता इस समय बटोरी हुई है बिखरी हुई है, एक जड़ा इकट्ठी करके बांध बड़ी डोरी एक चाय इकट्ठी करके भगवान के श्री चरण में डाल देनी है, ये हमारा एकमात्र लक्ष्य है। भजन बड़ा सरल है, ममता जहां बिखेरी हुई है उसको इकट्ठा करना है और श्री ठाकुर जी के चरणों में लगा देना है, परंतु ये स्वयं से स्वयं के प्रयासों से नहीं हो सकता। इसीलिए ये करने के लिए ही श्री गुरु श्री वैष्णव कृपा आवश्यक है कि ये कृपा ही वो बल प्रदान करेगी जिससे हम ये कर पाएंगे। मानस में वर्णन आता है मिले न रघुपति बिन अनुरागा, भगवान जो है बिन अनुराग के बिना नहीं मिलते, और मोह गए बिनु राम पद होए न दृढ़ अनुराग, मोह जाए बिना राम पद श्यामा श्याम के पद में दृढ़ अनुराग नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मोह के जब तक नहीं जाता दृढ़ अनुराग भगवान चरणों में नहीं हो सकता। तो जननी जनक बंधु सुत दारा है, इससे इस सब जगह से मोह को हटाना, ये स्वयं के हमने ये श्लोक सुना है, 6-7 साल से सुन रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, चर्निंग कर रहे हैं, पर क्या हम कर पाए हैं स्वयं से। अगर हम एक कण हैं और अभी भी व्यक्ति मानते हैं अपने पुरुष मान के पूरा दिन व्यतीत करते हैं पूरा हफ्ता व्यतीत करते हैं, तो अपने आप इस पुरुषपने से या स्त्री पने से बहुपने से मां पने से क्या हम स्वयं से चेष्टा से निवृत्त हो पाए हैं। अपने आप से पूछे क्या ये हमारा पहली बारी भक्ति में हम ये कर रहे हैं, कितने जन्मों से भक्ति कर रहे हैं तब तो इतने मंजरी भाव की में प्रवेश तो कई जन्मों की सुकृतियों का फल है भक्ति उन्मुख सुकृतियों। तो स्वयं से जैसे हम अभी तक नहीं कर पाए आगे भी नहीं कर पाएंगे जब तक इस टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाएंगे। टेक्नोलॉजी क्या है, श्री गुरु व श्री वैष्णव की सेवा की अतिशयता। ठीक है, हम आपको सारी चीजें जो व्याख्या बता रहे हैं अलग अलग ग्रंथों में जिस प्रकार बताया व्याख्या की गई है वही हम आपको बता रहे हैं। और ऐसा क्यों है कि भगवान क्या हम भजन करेंगे तो भजन से करुणा प्राप्त नहीं हो जाएगी, हाँ भजन करने से करुणा तो प्राप्त हो जाएगी, पर वो बोला भजन होगा नहीं जिससे करुणा श्री कृष्ण की प्राप्त होती है। निरंतर भजन, निरंतर चिंतन, अखंड भजन, जिस भजन से साधक को प्रवेश होता है प्रेम द्वार में प्रवेश होता है, उस कोटि का भजन केवल और केवल संभव है जब श्री गुरु श्री वैष्णव प्रसन्न होते हैं साधक से। उनकी प्रसन्नता ही वो हमसे वो करवा पाती है लीला में प्रवेश, सिद्ध देह में अपने प्रवेश, जो कि स्वयं की चेष्टा स्वयं के प्रयास से त्रिकाल में संभव नहीं है। रसवर्षिणी व्याख्या में एक स्थान पर वर्णन आता है कि शरणागत भक्त की सेवोन्मुख इंद्रियों, जो सेवोन्मुख जो मानस है, जो इंद्रिया है, उसमें सिद्ध स्वरूप जो है स्वयं स्फुरित होता है। ध्यान दें, शरणागत साधक की जो साधक शरणागत है, किनको शरणागत है, गुरु वैष्णव जो शरणागत है, उनकी सेवा उन्मुख जो उनका मानस है, जो इंद्रियां हैं, जो सेवा उन्मुख जो है, सेवा से बदल चुकी हैं, जो मानस जो बदल चुका है, कैसी सेवा से, गुरु वैष्णव की उनकी ऐसी सेवा जिससे प्रसन्न हो चुके हैं, ऐसी सेवा से जिनका मानस सेवा उन्मुख हो गया है, मानस एक एक वृत्ति सेवा उन्मुख हो गई है, एक एक वृत्ति सेवा उन्मुख हो गई है जिस शरणागत साधक की, उसके मानस में जो सिद्ध स्वरूप है वह स्वयं स्फुरित होता है। हम ये प्रयास कर रहे हैं स्फुरित हो जाए, करना भी चाहिए, साधन करना चाहिए, स्वयं का साधन करना, वह याचना करना श्री गुरु श्री वैष्णव के चरण में, हे ठाकुर, हे वैष्णव ठाकुर, कृपा करो, दिन रात उनकी कृपा की बाट जोते रहना, सेवा करने के साथ साथ कोरी नहीं। तो जो ऐसा साधक जिसका मानस सेवा उन्मुख हो गया है, उसके हृदय में सिद्ध स्वरूप स्वयं स्वरित होता है, प्रयास होगा पर तुरंत एकदम से कृपा से। वर्णन आता है प्रेम भक्ति चंद्रिका में, एक व्याख्या है पेज नंबर 129, इसमें बताया गया है श्री गुरु तथा वैष्णव की मनोमत सेवा के फलस्वरूप। अभी हमने बताया कि उनकी सेवा, अब यहां बता रहे हैं श्री बाबा जी की कैसी सेवा, श्री गुरु तथा वैष्णव की मनोमत सेवा के फलस्वरूप, उनकी जो मनोमत सेवा है उसके फलस्वरूप जिस परिमाण में कृपा का संचार होता है, उसी के अनुरूप मन प्राण जो है युगल के प्रीति रस सिद्ध हो उठते हैं। यही निष्कार्थ है, इसका सरलार्थ यह है कि जब हम गुरु की वैष्णव की मनोमयी सेवा करते हैं, जैसे उनका केवल प्रसन्नता विधान जिससे हमारा एकमात्र लक्ष्य होता है, केवल सेवा करते होता है कि मुझे ये अच्छा लगता है मैं इसलिए कर रहा हूं, नहीं, ये वो सेवा नहीं है जिससे सिद्ध स्वरूप में प्रवेश किया जाता है या राधा कृष्ण के दर्शन प्राप्त किए जाते हैं। मनोमयी सेवा, गुरु वैष्णव की मनोमयी सेवा, वो मनोमयी सेवा के फलस्वरूप जिस परिमाण में हमारा चित्त साफ होता है, उनकी कृपा से हमारा चित्त साफ होता है। चित्त साफ होने का क्या मतलब है, हमारे अंदर मैल है, मैल है क्या मतलब है कि हमें कोई अपना लगता है, मनुष्य अपने लगते हैं, सोचो मैं ईश्वर का अंश हूं, 84 लाख योनियों से परे और मनुष्यों में अपने को बुद्धि डाली हुई है, तो ये मैल हटता है, भोजन से आसक्ति हटती है, मीठे से आसक्ति हटती है, सेंसुअल प्लेजर से आसक्ति हटती है, रिस्पेक्ट प्राप्त होने की इच्छा, कोई मेरी बात माने, घर में सब मेरी बात माने, पैसे का लोभ, ये कितने आसक्तियां जो हैं, ये हमारे चित्त में मैल है। तो ये कैसे हटता है, ये ऐसे हटता है श्री गुरु और वैष्णव की मनोमत सेवा के फलस्वरूप, जिस परिमाण में कृपा होती है उसी परिमाण में हमारा जो मानस है वो युवा सरकार के प्रति प्रीति रस सिक्त हो जाता है। तो जिस परिमाण में कृपा होगी तो उसी परिमाण में हमारा जो मन है युगल सरकार का चिंतन कर पाएगा, नहीं तो चिंतन युगल सरकार का करना संभव नहीं है, उनकी सेवा करना। देखिए वास्तव में अगर आप समझें तो जो मंजरी स्वरूप है वास्तव में है क्या, आप कुछ सोचे क्या है ये मंजरी स्वरूप में सेवा करना? इसका मतलब है युगल सरकार के सिख सुख सिंधु में हम मीनवत विचरण करें निरंतर। ध्यान दें, युगल सरकार के सुख सिंधु में निरंतर मीनवत विचरण करें, उनकी सरस लीला को और सरस बनाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील चेष्टाशील होना, उनकी मनोमय सेवा करना, ये है मंजरी होना। तो जब तक हमने कभी किसी की मनोमय सेवा इस प्रकट काल में पृथ्वी पे करी ही नहीं तो क्या सीधा युवा सरकार की मनोमय सेवा कोई कर सकता है क्या? जब उस प्रकार से मानस बना ही नहीं है कि किसी की मनोमय सेवा करनी है, अपने इस मन जो मैं चाहता हूं उसको छोड़ के किसी की मनोमय सेवा करनी है, जब ऐसा हमारा मानस बना ही नहीं कभी भी, तो कैसे वो प्राप्ति सदा के लिए हो जाएगी, वो भी युगल सरकार की? इसलिए बताया जा रहा है शरणागत भक्ति सेवा उन्मुख जो मानस है उसमें जो होता है सिद्ध स्वरूप जो है स्वयं स्फुरित होता है। और ये एक दो दिन का खेल नहीं है, ये जब व्यक्ति महत्व समझ जाएगा कि स्वयं से होना संभव नहीं है, ये केवल और केवल जिस मात्रा में कृपा का संचार होगा उनकी अतिशय सेवा करके उसी मात्रा में ही ये हमारे अंदर भी संभव है कि हम भी उनका चिंतन कर पाए, अन्यथा जो है ये संभव नहीं है। एक होता है नाम लेना और एक होता है स्नेहयुक्त नाम लेना, ये बता रहे हैं श्रम संदर्भ टीका में श्री जीव गोस्वामी कि श्री भगवान नाम ग्रहण खलु द्विधा भक्ति, दो प्रकार से होता है भगवान नाम ग्रहण। कैसे? ये लंबा संस्कृत का वर्णन है, उसका सिद्धांत है केवल नाम ग्रहण, जैसे कई लोग केवल नाम ग्रहण करते हैं सिर्फ हरे कृष्णा जप कर रहे हैं, और एक होता है स्नेहयुक्त नाम ग्रहण कि प्रीति शून्य नहीं है, प्रीति के साथ नाम ग्रहण करना, तो ये भी चेष्टा करनी चाहिए। उसी प्रकार से एक होती है सेवा और एक होती है मनोमय सेवा। तो जैसे नाम और स्नेहयुक्त नाम, वैसे ही सेवा और स्नेहयुक्त सेवा, टोटल डिपेंडेंस कि हां अगर मेरा कल्याण होगा तो यही प्रोसेस है। इनकी सेवा अतिशयता से जिस मात्रा में ये प्रसन्न होंगे श्री गुरु श्री वैष्णव, उसी मात्रा में ही मैं वो शुद्ध भजन संपन्न कर पाऊंगा जिससे लीला में प्रवेश होता है। लीला में प्रवेश का क्या मतलब है? और जो रस सागर में डूबे हुए हैं उस रस सागर को और उच्छलित करना श्यामा श्याम के, तो उसके लिए एक्लेमेटाइज होना होगा कि हां मनोमय सेवा करने में ये वास्तव में ये बल जो है आध्यात्मिक बल, ये प्रसाद ये हमें समझ आए कि यही ऐसे ही प्राप्त होता है तो हम उस प्रकार से लग पाएंगे सेवा में, अन्यथा हम लग भी नहीं पाएंगे। और जब तक लग नहीं पाएंगे तो स्वयं जैसे बाबा जी कह रहे खूब ग्रंथ पढ़ते हैं सुनते हैं पर हम निष्ठापूर्वक भजन नहीं कर पाते। कारण यह है कि जो भगवान ने अपनी करुणा जो है वो भक्तों में सौंपी हुई है, भक्तों को सौंपी है, स्वयं से ये कर पाना संभव नहीं है। आगे ये वर्णन करते हैं, आगे भी हम पढ़ सकते हैं। ये है 86 वर्स प्रेम भक्ति चंद्रिका, इसकी व्याख्या में वर्णन है जिस भाग्यवान जीव पर भगवान की करुणा उतरकर जितना अधिक प्रभाव विस्तार करती है वह उतना ही भगवत कृपा या प्रेम पाने का अधिकारी होता है। तो महापुरुषों की करुणा जिस मात्रा पर हमारे हृदय पे विस्तार करती है, प्रभाव करती है, उसी मात्रा में ही कोई कृष्ण प्रेम के जो रास्ता है उसमें अग्रसर उसी मात्रा में ही हो पाता है। ये बिल्कुल एकमात्र उपाय है जिससे कि भगवत प्राप्ति, प्रेम प्राप्ति जो है संभव है। ऐसा नहीं कि विकल्प है, कोई किस प्रकार से कर रहा है और कोई किस प्रकार से कर रहा है, विकल्प नहीं है, विकल्प बिल्कुल नहीं है। मार्ग जो है वो एक है, मार्ग बहुत सारे नहीं है। लोगों को लग सकता है, भक्तों को, साधकों को लगता है कि हम चल रहे हैं, चल नहीं रहे, भटक रहे हैं। देखिए जैसे कि ट्रेन चलती है, दो पटरी होती है, उसके ऊपर ट्रेन चलती है तो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचती है। उसी प्रकार से ये जो ट्रेन है, ये जो पैरेलल ट्रैक्स हैं, ये श्री गुरु कृपा, श्री वैष्णव कृपा, ये दोनों पे जब सवार होकर हम चलते हैं तो अपने डेस्टिनेशन युवा सरकार के प्रेममय सेवा की प्राप्ति संभव हमारी हो पाती है। जब कोई इस ट्रेन में ही नहीं चढ़ा तो उसको लग रहा है चल रहा है, चल नहीं रहा, वह भटक रहा है, भटक रहा है, भटक रहा है, भटक रहा है, ट्रैक पे ही नहीं है। तो जब इस ट्रैक पे नहीं आएंगे तो वो गंतव्य स्थान पर पहुंचना संभव नहीं है। ये मार्ग तो बड़ा ऐसा है कि छोटे शिशु बन के ही चलना होता है। मां को उंगली पकड़ा दी, इतना कठिन रास्ता मां उंगली पकड़ के सीधा लेके चली जाएगी। स्वयं के प्रयास से बालक सोचे मैं वो कुंभ मेले से पार करके वहां पहुंच जाऊंगा, संभव नहीं है। एक कुंभ मेला, एक जंगल, एक जंगल में एक छोटे बच्चे को छोड़ दो 5 साल के, क्या वो अपने आप से पार हो जाएगा? नहीं। परंतु जो जानते हैं जंगल का चप्पा चप्पा, क्या करना है, सिर्फ उंगली पकड़ा देनी है, फिर क्या होगा, कभी इधर से कभी उधर से कभी ऐसे करके हमारे को बाहर ले जाएंगे। वो जानते हैं, वे गाइड हैं इस जंगल के गवर्नमेंट द्वारा कि हाँ आप इनको पार करा दो। उसी प्रकार से ईश्वर द्वारा निर्धारित ईश्वर की कृपा जो है वही मूर्तिमान स्वरूप में विचरण कर रही है, इससे ज्यादा सौभाग्य की बात क्या हो सकती है। गुरु रूपे कृष्ण कृपा कौरेन भक्त गणे, चैतन्य चैतन्य में तो वर्णन आता है, गुरु रूपे कृष्ण कृपा कौरेन भक्त गणे। गुरु रूप में श्री कृष्ण भक्त गणों पे कृपा करते हैं, श्री गुरु और श्री वैष्णव। बाबा जी ने व्याख्या करके विस्तृत बताया गया, श्री गुरु और श्री वैष्णव के रूप में ही भगवान कृपा करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि विकल्प बहुत सारे हैं, मार्ग एक ही है। यह मार्ग ज्ञात ना होने के कारण लगता है कि मार्ग बहुत सारे हैं, मार्ग एक ही है। जब तक गुरु वैष्णव के चरणों में रति नहीं होगी तब तक ये प्रेम प्राप्त होना संभव नहीं है। सोचिए कि नरोत्तम दास ठाकुर कौन है, नरोत्तम दास ठाकुर कौन है, ये वो व्यक्ति हैं जब ये प्रकट नहीं भी हुए थे तब भी श्री गौरांग महाप्रभु का नाम लेते थे, नरोत्तम नरोत्तम, पैदा नहीं हुए फिर भी नरोत्तम नरोत्तम। नरोत्तम दास ठाकुर नित्यानंद प्रभु के आवेश अवतार है और मंजरी है, और इतने मतलब इनका वर्णन करना भी समझो, नित्यानंद आवेश अवतारों का क्या वर्णन कर सकते हैं। वह अपने स्वरूप में रहने के बावजूद भी आप उनकी कितनी प्रार्थनाएं पढ़ें तो आप पाएंगे कि उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि किस प्रकार से एक साधक को भक्ति करनी चाहिए। साधक जब यदि रहस्यों को नहीं समझेगा जो उन्होंने खोल के बताया गया तो भक्ति कैसे कर पाएगा। वो सिद्ध हैं, नित्य सिद्ध परिकर हैं भगवान के, नरोत्तम दास ठाकुर। वो क्या बोल रहे हैं कि रूपे पाई बो सेवा मोई दुराचार, कि रूपे पाई बो सेवा कृष्ण वेरती ना होइलो आमार श्री गुरु वैष्णव श्री गुरु और श्री वैष्णव मेरी रति ही नहीं हुई अगर तो मेरे को किस प्रकार से सेवा मिलेगी युवक सरकार की रूपे पाई वो किस प्रकार से मुझे सेवा मिलेगी की रोक में पाई वो सेवा तुम्हें की कोई विकल्प नहीं कोई विकल्प है नहीं न तो मैं सब बता देखिए क्या ये स्पष्ट नहीं बता रहे पर क्या हम पढ़ के भी पढ़ पाते हैं समझ पाते हैं इसलिए कई जो गुण तत्व होते हैं उन्हें गुरुमुख से श्रवण करने पे ही उनका समझ आना संभव है स्वयं से संभव नहीं होगा साधक नहीं समझ सकता ये प्रकाशित होते हैं अर्थ क्या बता रहे वैष्णवे ते लेश मात्र रति ना जन्मीलो वैष्णवे ते लेश मात्र रति ना जन्मीलो वैष्णव में लेश मात्र में रति नहीं किस प्रकार से मुझे सेवा मिलेगी केवल गुरु की सेवा नहीं वैष्णवों की सेवा के लिए भी वर्णन आए गुरु और वैष्णव दोनों की सेवा करें कई लोग बोलते नहीं सिर्फ गुरु की सेवा नहीं 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 गुरु और वैष्णव दोनों की सेवा साधे साधन तक पुस्तक में वर्णन है प्रारंभ में ही वास्तविक गुरु वो है जो शिष्यों को वैष्णवों की सेवा में लगाते हैं और वास्तविक वैष्णव वो हैं जो भक्तों को गुरु की सेवा में लगाते हैं तो अगर हम किसी भक्तों के जुड़े हैं जो गुरु की सेवा में नहीं लगाते तो वो सही वैष्णव है ही नहीं श्री वैष्णव छोड़ो सही वैष्णव भी नहीं चाहे वो गोस्वामी क्यों ना हो और यदि कोई गुरु है और वैष्णवों की सेवा में लगाते तो हमें पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाएगा अब हम एक आपको व्याख्या करके एक कथा के माध्यम से बताएंगे कि किस हद तक वास्तव में गुरु वैष्णव में प्रीति का वास्तव में मतलब क्या होता है ये आपको इस कथा के माध्यम से हम आपको बताएंगे एक पति पत्नी थे श्रीधर जी और उनकी पत्नी उनको श्रीधरानी भी बोलते हैं और श्रीधरायन भी बोलते हैं जैसे पंडितायन होता है वैसे श्रीधरानी भी बोलते हैं श्रीधरायन भी बोलते हैं श्रीधर जी और उनकी पत्नी थे वे दिन रात भजन करते थे और साथ में उनके प्राण थे बसते थे संतों की सेवा में वैष्णवों की सेवा में जिस दिन घर में वैष्णव नहीं आते थे भोजन उनको वो नहीं पवाते थे उस दिन उनके घर में रसोई नहीं बनती थी रसोई बनती तभी थी जब गुरु वैष्णव को प्रसाद पवाएंगे गुरु वैष्णव का प्रसाद पवाना उनका उचिष्ट ग्रहण करना ये उनका नित्य नियम और जिस दिन गुरु वैष्णव नहीं आएंगे घर में उनका प्रसाद नहीं पवाएंगे उस दिन उपवास बिना एकादशी के उपवास कई बार होता था उपवास उनका ऐसा एक संतों का नियम रहा है संतों का मतलब गृहस्थी संतों का और वैरागी संतों का भी रहा है श्रीमान पलटू जी महाराज और अन्य कई संतों का भी रहा यह नियम कि वैष्णव को पवा के भोजन पाना और खुद भगव स्मरण में दिन रात डूबे रहना अपना चिंतन में प्रवेश रहना हमेशा खुद इतनी उन्नत अवस्था होने के बाद हमारा थोड़ा सा मन लगता है तो हमारा अहम आ जाता है अरे मुझे क्या जरूरत है किसी की सेवा करने की ये खुद दिन रात स्मरण में डूबे हुए हैं उसके बावजूद भी दिन मन किसमें बसता है प्राण किसमें बसते हैं वैष्णवों की सेवा में अब कुछ काम तो है नहीं जिस स्मरण में ही मग्न रहते हैं हर समय तो काम नहीं धीरे धीरे करके क्या हुआ धन उनका खत्म हो गया और कोई सोर्स भी नहीं है तो इनकम भी नहीं है और जो था वो भी खत्म हो गया तो धीरे धीरे करके शून्य हो गया धन परंतु वैष्णव सेवा में प्राण बसते हैं जिसको जो शराब पीता है उसका धन शून्य हो जाए तो क्या करेगा प्राण बसते हैं शराब में ना तो शराब के लिए कुछ भी करेगा तो जिसके मन वैष्णवों की सेवाओं की प्रसन्नता में बसते क्योंकि भाई महत्व समझ आ गया है की रूपे पाई मुझसे मुझे दुराचार मैं दुराचार व्यक्ति हूं, कैसे मैं सेवा प्राप्त कर सकता हूं। तो उन्होंने क्या किया, सब कुछ घर का बेचना शुरू कर दिया। वैष्णव जब भी आने उनको संतुष्ट जरूर करते थे, सब कुछ घर का बिक गया जो सामान था, यहां तक कि उनके खिड़की और दरवाजे भी बिक गए, एक बस चार दीवारी सी रह गई, सब कुछ बिक गया। परंतु वो बहुत खुश रहते थे हमेशा, क्योंकि उनकी संत सेवा ही उनका प्राण थी, जीवन था। अब एक दिन एक पति पत्नी आए, दीपा जी और उनकी पत्नी आए और दर्शन किए। उन्होंने तो गदगद हो गए, श्रीधर जी और श्रीधरानी जी, कि हमारे घर में संत आए हैं। सोचिए अगर हम हो, हमारे घर में एक पैसा ना हो और हमारे घर में संत आए तो हम क्या सोचेंगे। पर वो क्या हो रहे हैं, वो गदगद हो गए और गदगद होने के साथ चिंतित भी हुए थोड़े। श्रीधर जी ने बोला श्रीधरानी को, अब हम क्या करें, इनको सेवा कैसे करें, हमारे पास कुछ भी नहीं है, घर में एक दाना अन्न का नहीं है और इतने सुंदर भक्त आए हैं, कैसे इनकी सेवा करें। तो श्रीधरानी जी वो घबराए, कहते आप चिंता क्यों करते हैं, हमको ये संत है, इनको कुछ भी थोड़ा भी सेवा कर देंगे तो संतुष्ट, संत है, संत को थोड़ी सेवा से भी संतुष्ट हो जाते हैं वो, तो हम थोड़ी सेवा करें, तो कुछ है नहीं तो सेवा करेंगे कैसे। पूरे घर में कुछ नहीं, एक जोड़ा जो पहना है उसके अलावा कुछ नहीं, कोई कपड़ा, कोई बर्तन, कुछ नहीं है, सब कुछ खत्म हो चुका है। फिर श्रीधरानी देखिए उन्होंने क्या बोला, जो मैंने वस्त्र जो पहने हुए हैं, एक ही साड़ी ओढ़ी हुई है, ये पहने हुए वस्त्र, इसी को ही बेचो, इससे जो मिले आप वो ले आए धन, उसी से हम उनकी सेवा कर देंगे संतों की। तो जो घर में कोई वो वस्त्र नहीं, अपने जो वस्त्र पहने हैं वो भी उतार के दे दिए अपने पति को, तो वो पति भी कितने महान है, वो वस्त्र लेके बेचने चले गए। बताइए पहना हुआ वस्त्र कोई खरीदता है क्या, पर ठाकुर जी के लिए ठाकुर जी ने स्वयं ही खरीद लिया, ठाकुर जी एक रूप में आए और उन्होंने स्वयं खरीद लिया वो वस्त्र और एक स्वर्ण मुद्रा दे दी। स्वर्ण मुद्रा दी तो उससे बेच के सब सामान भोजन इत्यादि का लिया, घर आया, रसोई बनाई और दो थाल लगाए, सुंदर सुंदर व्यंजन रखे और दीपा जी उनकी पत्नी को, सीता, सीता सहचरी उनका नाम था पत्नी का, उनको दिए कि आप पाइए। उन्होंने कहा दो नहीं हम चारों इकट्ठे पाएंगे, उनको पत्नी को भी बुला लिया, हम चारों इकट्ठे पाएंगे। पत्नी आए कैसे, वो तो नग्न है बिल्कुल रसोई में और वो भी नग्न। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं हमारा नियम है कि पहले हमारे अतिथि पाले। श्रीधर जी ने कहा हम तो बाद में ही पाते हैं, नियम है नहीं नहीं ये हमें ये नहीं है, आप उनको बुला कर नहीं, बोले नहीं हम बाद में पाएंगे आप। फिर क्या हुआ, पत्नी को उन्होंने अंदर भेजा, सीता सहचरी अंदर गई रसोई में, देखा तो बिल्कुल नग्न अवस्था में श्रीधरानी जी हैं और परंतु बहुत आनंद में थी रसोई में और अश्रु विसर्जन कर दिए, एकदम पुलकी तोड़िया एकांत में बैठ के भी। ऐसा क्यों है आप ये देख सकते हैं, नवतंद सागर की ये जो पंक्ति है इसमें यहाँ पे सिद्ध होती है। वैष्णव संगे ते मन आनंदित अनुक्षण सदा होए कृष्ण पर संग। वैष्णवेण वैष्णव संगे ते मन आनंदित अनुक्षण, वैष्णव को जो संग प्राप्त होता है उससे मन हमेशा ही आनंदित रहता है। तो इनको वैष्णव का संग प्राप्त हो, कि सेवा प्राप्त हो, तो वो सेवा के आनंद से ही विह्वल हैं, अश्रु विसंचित कर रही हैं, नग्न, अपनी कोई पीड़ा नहीं है कि कपड़ा नहीं है पहनने को, इसी खुशी में ही मैं अश्रु विसर्जन कर रही है, विह्वल है और यही सोचने कि महात्माओं की सेवा करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसी में इतनी पुलकित है, आनंदित अनुक्षण। तो सीता सहचरी गई, उन्होंने वो स्वयं सीता सहचरी परम भक्त थी, उनको भी भगवान का साक्षात्कार हुआ हुआ था, तो उन्होंने देखा कि सीता सहचरी और पीपा जी वास्तव में राजा और रानी थे, उन सब त्याग करके इस प्रकार का जीवन जी रहे थे उन्होंने देखा इनके त्याग के सामने हमारा त्याग क्या, उनको देखने में समझ आने में कोई देर नहीं लगी कि सब कुछ इनका कुछ भी नहीं है, इसलिए ये रसोई में इस अवस्था में बैठी है बिना कपड़ों के। तो उन्होंने पूछा सीता ऐसा क्यों किया आपने, उन्होंने बोला श्रीदरानी जी ने हमारे आराध्य देव संत हैं, संत सेवा हमारा सब कुछ है, हमारा आराधना जो है वो संत सेवा है, हमारा जो प्राण है वो संत सेवा, सब कुछ हमारा संत सेवा है, हमें संत सेवा बहुत प्रिय लगती है, हम ये चाहते हैं हमारा सारा जीवन हमारा सारा समय केवल संत सेवा में चला जाए, सारा जीवन सारा समय केवल संत सेवा में चला जाए। जब संत पधारते हैं तो हमें बहुत आनंद का अनुभव होता है, होना ही चाहिए, वैष्णव को देख के आनंद ना अनुभव हो तो हमें हमारी भक्ति का बीज भी अभी जरा सा भी नहीं बढ़ा। जब संत पधारते हैं तो बहुत आनंद होता है, उनका संतों का दर्शन करके, संतों का संग करके, संतों को भोजन पवाने से हमें बहुत सुख मिलता है, हमें अपार सुख का अनुभव होता है, संतों को भोजन पवाने से, संतों का दर्शन करने, संतों से वार्ता करने, हमें अपार सुख का अनुभव होता है। जो सुख एक बाप को अपने बेटे को पवाने से होता है उससे भी कई अधिक सुख हमें संतों को पवाने से होता है। हरिराम व्यास जी ने कहा कि सोने की लंका भी यदि मिल जाए तो भी ये सुख का वो मुकाबला नहीं कर सकती जो भक्तों के संग से उनकी सेवा से सुख प्राप्त होता है, सोने की लंका भी यदि हमें प्राप्त है तो भी वो सुख की बराबरी नहीं है, इतना सुख है संत सेवा, संत सेवा से भगवत सेवा मिलेगी ये बात नहीं है, केवल संत सेवा अपने में आनंदमय जर्नी है, डेस्टिनेशन तो आनंदमय है ही, जर्नी भी आनंदमय है, परम सुखकारी है संतों का संग व संतों की सेवा। हमने सोचा था, उन्होंने कहा पर आपने ऐसे आपको ऐसा नहीं करना, जब तो वस्त्र तो डालने ही रखने चाहिए था। उन्होंने बोला अब क्या व्यर्थ की बातें कर रही हैं, क्यों समय नष्ट कर रही हैं सीता सेंचुरी, ये शरीर तो नंगा ही आया था संसार में और जाएगा भी नंगा, अभी थोड़े देर संत सेवा के बीच में नंगा हो गया तो कौन सी बड़ी बात हो गई, हमने तो सोचा था कि आप ये व्यर्थ शरीर की बातें ना करके आप हमें भगवान की ठाकुर जी की रूप माधुरी के विषय में कुछ वर्णन करेंगे, ठाकुर जी के उदारता के विषय में कुछ बताएंगे, ठाकुर जी के गुणों के विषय में कुछ बताएंगे। बोधयंत परसम तथ्यंत शमाम नित्यम, जब भक्त आपस में मिलते हैं तो ये करते हैं, सोचिए वो नग्न अवस्था में कपड़े के बारे में बात हमको चुप है, क्या बेकार शरीर की बातें कर रहे हो, हमें तो क्या करना चाहिए ठाकुर जी का नाम, उनकी लीला उनके रूप के बारे में चर्चा करनी चाहिए, तो हमें भी ध्यान देना चाहिए भक्तों से बात करें क्या बात करते हैं, इससे खराब अवस्था तो हमारी नहीं हो सकती, फिर भी बात क्या करनी है भक्तों से, सिर्फ ये कथ्यं तस्य माम नित्यम, जब तक उदाहरण ना हो वातावरण ना हो तो हम सही रूप से भक्ति प्रैक्टिस कर नहीं सकते। तो ये शरीर तो नंगा पैदा हुआ था, नंगा ही जाएगा, इसको छोड़ो, आप हमें ठाकुर जी संबंधित बात करिए, तो समय नष्ट कर रहे हो शरीर के बारे में, मांग गया नंगा है क्या है, तो नंगा ही तो था शुरू में, बाद में भी नंगा रहे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी जो वस्त्र साड़ी डाली उसके आधी करी, फिर उनका पहनाई, उनका प्रॉपर दोनों ने वस्त्र डाला, फिर उन्होंने एक साथ गए उन्होंने भोजन इत्यादि किया। तो इससे हमें समझ आता है कि जो रति होती है वैष्णव में, किसको कहते हैं वैष्णव में रति होना, और जब तक इस कोटि की, अच्छा इस कोटि की रति क्या सबकी हो सकती है, नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि इस कोटि का ज्ञान नहीं है, क्या ज्ञान, कि जिस मात्रा में गुरु और वैष्णव हमारे हृदय में हमारे हृदय से प्रसन्न होंगे उसी मात्रा में ही हम उस कोटि का भजन उस कोटि का चिंतन कर पाएंगे जिससे वास्तव में भगवत प्राप्ति होती है, अन्यथा भगवत प्राप्ति एक हमारा विचार हो सकता है पर वो फ्रक्टिफाई नहीं हो सकता हमारा विचार। इसीलिए ठाकुर वैष्णवों को आप नरोत्तम साहब के प्रार्थनाओं में पढ़े बताया गया है ठाकुर वैष्णव पद अवनीर संपद, ठाकुर वैष्णव पद, वैष्णवों को क्या बोला गया है, ठाकुर हम ठाकुर जी बोलते हैं ना भगवान को, उसी पूज्यार्थ में पूज्य बुद्धि के साथ ही वैष्णवों को ठाकुर बोला गया। ये मेरे ठाकुर हैं, वैष्णव मेरे ठाकुर हैं, वैष्णव ठाकुर। ओहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर ए दासे करुणा कौरी। तू बताने नौतम ठाकुर, ठाकुर वैष्णव पद अवनीर संपद, सुनो भाई होइया एक मन। क्या बोल रहे हैं, कितना प्रेम है उनको हमारे साथ, को कैसा खोल के बता रहे हैं। देखिए फिर भी पढ़ के भी हम नहीं पढ़ पाते, ये सब ये पढ़ते हैं भजन प्रार्थना, परंतु वो अर्थ प्रकाशित नहीं होता। बोल रहे हैं क्या, सुनो भाई, हे मेरे भाई, हे मेरे बच्चों भाइयों, सुनो एक बार होके सुनो। क्या सुने, अवनीर संपद, अवनी माने पृथ्वी, इस पृथ्वी की संपदा है, सबसे मूल्यवान संपदा है। कौन, ठाकुर वैष्णव ठाकुर गुरुजन वैष्णव श्री गुरु, ये इस पृथ्वी की संपदा है, धरोहर है, सबसे मूल्यवान चीज है इस पृथ्वी की, ये बताया जा रहा है। तो सबसे मूल्यवान चीज हमें, जैसे मानो कोई चीज पड़ी हो ऐसे जगह कि यह पत्थर है, उसी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। कोई आके हमें बता दे ये पत्थर नहीं है, ये हीरा है, इतना मोटा हीरा, तब आप उसकी कीमत कितनी है, 170 करोड़, तब आपको रहेगा अरे कितनी महत्वपूर्ण चीज है, इसका मैं कदर करूं। तो जब तक जिस चीज का महत्व नहीं मालूम होगा तो वो कूड़े के समान है, और महत्व पता चल जाए ये 170 करोड़ रुपए का हीरा है तो उसे कितनी वैल्यू हो जाएगी। उसी प्रकार से वैष्णव जो है क्या है, अवनीर संपद, इस पृथ्वी की संपत्ति है, सबसे बड़ी संपत्ति है। और यही कृष्णदास कविराज बता रहे हैं चेतन चेतन में, एस वैष्णव एई क्षेत्रेर भूषण, ये जो वैष्णव है इस क्षेत्र के भूषण है, संपदा है। तो वैष्णव जो है, वैष्णव संग मिलना, गुरु का संग मिलना, इससे ऊंची कृपा भगवान के पास नहीं है करने को। भगवान जब हमारे पे असीमित रूप से प्रसन्न होते हैं तो हमारे को गुरु और वैष्णव का संग देते हैं, इससे ऊंचा संग, इससे ऊंची कृपा ठाकुर जी के तिजोरी में है ही नहीं। ये हमने अंतिम कृपा जिस पे करनी होती है उसको श्री गुरु और श्री वैष्णव का संग देते हैं। धर्मस्य तत्व निहितं गुहायां, धर्म का तत्व महात्मा के हृदय में रहता है, ये पुस्तकों में है पर वो चिन्मय होने के कारण हम नहीं जान सकते स्वयं के अध्ययन श्रवण से भी, पठन पाठन से। पर जो महात्मा जिनके हृदय में है धर्मस्य तत्व, जो गुह्यार्थ हैं, वो हमें यदि वर्णन कर दे तो हम इन गूढ़ रहस्यों को समझ सकते हैं और वो पालन करके अपना जीवन यापन कर सकते हैं। अभी जो है कि मैं राधा रानी की मंजरी हूं, मैं एक कण हूं, मेरा संसार में किसी संपर्क नहीं है, ये सब जो है हमारी एक्सेप्टेंस है कि हाँ हम मानते हैं, एक्सेप्टेंस है, परंतु ये करने के लिए ईगरनेस नहीं है, उत्कंठा नहीं है। तो जब उत्कंठा नहीं है तो हृदय में ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं है कि मैं मंजरी बन जाऊंगी, कुछ कंठा ही नहीं है उस भाव की प्राप्ति की सिद्धि के लिए, तो सिद्धि कैसे होगी, ट्रांसफॉर्मेशन हृदय का कैसे होगा। तो अभी एक्सेप्टेंस है, एक्सेप्टेंस ईगरनेस कि हाँ मेरे को प्राप्त करना है, ये कैसे आएगी, उनके संग और कृपा से जिनके अंदर ये ईगरनेस है, श्री गुरु और श्री वैष्णव, उनका संग करना, उनका कृपा प्राप्त करना, उनकी मनोमय सेवा से, जिस मात्रा में उनकी मनोमय सेवा करेंगे और वो हमारे पे रीझ जाए, रीझ जाए, रीझना मतलब है कृपा कर दें। उनका रीझना क्या है, श्री गुरु का श्री वैष्णव का, वो भीतर से इनके इनके लिए प्रार्थना कर दें, राधा रानी इनको मिल जाओ, बस फिर वो कोई योग्यता नहीं देखेंगी, आप में क्या बुरे संस्कार हैं, आपके ये प्रबल कर्म अभी पेंडिंग है, हाँ आपसे ये गलती हुई है, वो कुछ नहीं देखेंगे, एक सेकंड में पोछा लगा दिया जाएगा सारी चीज को, एक बारी श्री गुरु श्री वैष्णव प्रसन्न हो जाए और वो एक बार ही बोल दे राधा इनको मिल जाए बस। फिर कोई योग्यता कोई विचार नहीं किया जाता कि इनको मिले या ना मिले, फिर उनको मिलना पड़ेगा क्योंकि वो टाल नहीं सकती है अपने श्री गुरु और श्री वैष्णव की बातों को टालना भगवान के लिए संभव नहीं है। फिर वो मिल जाते हैं, उनकी प्रसन्नता जो है श्री गुरु श्री वैष्णव की वो कल्याण करती है जो स्वयं के साधन से कभी भी संभव नहीं है, कभी भी संभव नहीं है। और ऐसा नहीं है कि हम वैष्णवों को और गुरु के सामने ऐसे आगे बोले कृपा करो, कृपा करो क्या होता है, वो हम वो प्रसन्न हो जाएंगे तो अहेतु की कृपा हो जाएगी, मतलब गन पॉइंट पे कृपा नहीं प्राप्त की जा सकती, कृपा करो मैंने सेवा करी कृपा करो, ना ना ऐसा नहीं होता। जैसे एटीएम मशीन होती है उसमें खड़े हो गए उसके सामने खड़े हो जाए हम बोले पैसे दो ऐसे पैसे नहीं निकलते, उसमें कोई कार्ड डालते हैं, हम तो बाहर ही निकले पता नहीं 12 वर्षों से, हमारा तो 12 वर्ष से कोविड वाला ज्ञातवास ही चल रहा है मोरलेस, तो कभी वृंदावन या नवद्वीप चलेगा अदरवाइज तो यहीं पे ही है, लगभग 1 साल हो रहा है, मई मार्च 7 को आखिरी बारी हम पिछले वर्ष निकले थे इस फ्लोर के बाहर, तो मार्च 7 के बाद तो यहीं पे ही है। तो फिर भी एटीएम मशीन होती है कुछ उसमें कार्ड डाला जाता है उसमें कुछ नंबर डाले जाते हैं कोड वर्ड्स होते हैं ABCD या 1254 जो भी है वो डालो फिर प्रोसेस को करो तो फिर वो धन निकल के आता है, फिर प्रोसेस होता है, ऐसे नहीं कि धन दो धन नहीं आएगा, है धन एटीएम मशीन में ही पर एक प्रोसेस से आएगा, उसमें कहा श्री गुरु श्री वैष्णव कर सकते हैं, प्रोसेस क्या है उनकी मनोमय सेवा, वो हृदय से प्रसन्न होना चाहिए। हमने पूर्व में भी वर्णन किया है कि कृपा जो है ये मौन में घटने वाली घटना होती है, महात्माओं के जब वह मौन में होते हैं उनके हृदय में घटने वाली ये घटना होती है कि हमारी सेवा उनको स्पर्श कर देती है, इसलिए सेवा मनोमय होनी चाहिए, सिवे सेवा जो होती है हृदय स्पर्शी होनी चाहिए, हमारे हृदय स्पर्शी नहीं उनके हृदय को स्पर्श करें, उनकी मनोमय सेवा उनको हृदय स्पर्शी सेवा होनी चाहिए, जब हम करते हैं उनका मर्म स्पर्शी सेवा करते हैं जब वो हृदय से प्रसन्न होते हैं तो उनकी कृपा ही है उनकी प्रसन्नता ही मूल है कारण हमारी भक्ति में उन्नति का, दो कारण नहीं है अन्यथा तो भटकाव है केवल, बहुत सारे मार्ग नहीं है मार्ग एक ही है। तो जिस मात्रा में सेवा करते हैं उसी मात्रा में उनकी प्रसन्नता, जिस मात्रा में हम अर्जित करते हैं उसी मात्रा में हम भक्ति में उन्नत हो पाते हैं। संत जो है पारसमणि के समान है, पारसमणि क्या करती है किसी लोहे को भी छोटे से सोना बना देती है, परंतु संत क्या है वो पारसमणि ऐसे किसी को छोटे से दूसरे को भी पारसमणि बना देती है स्वयं के जैसा अपने जैसा मिनीमी अपने जैसा बना देती है। तो जब तक हम इन तत्वों को सही रूप से समझे नहीं होंगे तो वो सामर्थ्य ही नहीं आएगा भजन करने का जिससे लीला में प्रवेश होता है, ठाकुर जी के सुखों का स्पंदन राधा कृष्ण सुखों का स्पंदन हमारे हृदय में होता है, वह स्थिति नहीं आएगी। इसलिए बृहद नारीय पुराण में भी वर्णन आता है कि कई जगह वर्णन आता है भागवत में बृहद नारियल पुराण में कि गंगार परश होने पश्चाते पावन दर्शने पवित्र करो यही तो मार्ग हो, ये तो ठाकुर महाशय बता रहे हैं। वैसे भागवत में भी वर्णन आ रहा है कि जो जलमय तीर्थ हैं या गंगा भी हैं या तीर्थ स्थान भी हैं वह शीघ्र जो है पवित्र नहीं कर पाते भक्तों का साधकों को, बहुत लंबे काल तक उनका सेवन करो तीर्थों का या ठाकुर जी के विग्रह का भी है तो बहुत लंबे काल तक सेवा करने के बाद वो पवित्र करते हैं किसी को, परंतु जो वैष्णव जन है गुरुजन है वो क्या है गंगार परश होइले पश्चाते पावन, बहुत समय बाद पावन करता है गंगा का स्पर्श भी, और दर्शने पवित्र करो यही तो मार्ग गुण, दर्शन से ही पवित्र कर देते हैं, बात करते तो बात ही क्या है। उन्होंने हमसे बात कर ली, किसी गुरुजन ने वैष्णव ने हमसे बात कर ली, दर्शन से ही पवित्र कर देते हैं। दर्श परश अभिनाश, ये भी वर्णन आया है, अपने दर्शन से अपने स्पर्श करने से वे पापों का नाश कर देते हैं वैष्णव जन। जब दर्शन स्पर्श से ही पापों में सेवा स्वीकार कर ले यदि, तो क्या अप्राप्ति सम क्या चीज प्राप्त नहीं होगी फिर। कृपा से, उनकी कृपा से ऐसी अवस्था, ऐसी सिद्ध अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है जो कि स्वयं के सामर्थ्य से परे है, अस्पर्शित रहेगी वो स्थिति स्वयं के प्रयास से सर्वदा। इस बात को हमें समझना चाहिए। इसलिए ठाकुर महर्षि कह रहे हैं कि गंगा में स्नान करना और भक्तों का संग करना, इसमें से भक्तों के संग रूपी स्नान जो है वही स्नान श्रेष्ठ है गंगा रूपी स्नान से भी। क्यों? भक्तों का संग रूपी स्नान से, उनकी सेवा से व्यक्ति तुरंत पवित्र हो जाता है, क्योंकि गंगा में स्नान करके लंबे कालों सालों साल कभी व्यक्ति पवित्र नहीं होता। मछली तो गंगा में निरंतर रह ही होती है, कितनी मछलियां, तो क्या वो निकुंज की प्राप्ति के अधिकारी हो जाती है? नहीं। जो इस मार्ग में जो संत हैं, जो श्री गुरु हैं, जो राधा प्रिया धीमही हैं, हाँ, और श्री वैष्णव हैं, जिनको कितनों का अंतिम जीवन है, उनका सेवा, उनका दर्शन करके हमें वो फल प्राप्त होता है जो गंगा में स्नान करके भी फल प्राप्त नहीं होता। और कृपा जो है ये ऐसे समझ लीजिए, जैसे हमें एटीएम मशीन का एग्जांपल दिया। दूसरा एग्जांपल हम आपको दे सकते हैं, गन्ना, गन्ना होता है, गन्ना को आप बोलो कि रस दे, तो गन्ना क्या रस दे देंगे? नहीं। पर गन्ना ऐसी प्रक्रिया से अगर गुजरे तो गन्ने का रस आपको प्राप्त हो जाता है। ठीक बात है। उसी प्रकार से ये जो भक्त हैं, गुरुजन हैं, ये गन्ने के समान मिष्ठी हैं, मधुर हैं, परंतु ये द्रवण क्रिया इनके हृदय में हो, जैसे गन्ने में द्रवण क्रिया होती है तो रस प्राप्त होता है, इनके हृदय द्रवित हो जाए हमारे प्रति, द्रवित हो जाए केवल, तो हमें वो कृपा मांगने से नहीं मिलती, कृपा करोगे, कृपा इस प्रकार से आचरण हो, इस प्रकार से हमारा सेवा हो कि उनका हृदय स्पर्श हो जाए कि हाँ हे राधा रानी इनको मिल जाओ। तो ऐसा भी होता है कि व्यक्ति मरने की अवस्था में, व्यक्ति मरने वाला हो, भक्त मरने वाला हो, तो गुरुजन चाहे तो, गुरु तो सर्वत्र व्याप्त है, इधर भी है, अमेरिका में भी है, सब जगह में है, तो भारत के किसी भी देश विदेश किसी भी हर स्थान पे गुरुजन है, हर स्थान अखंड मंडल आकार व्याप्तम जीवन चराचरम, हर स्थान पे है जहां। तो यदि वो प्रसन्न हो जाए, उन्हें मालूम हो कि कोई व्यक्ति शरीर छोड़ने वाला, तो अपने एक रूप से आप होंगे, केवल अपना हाथ रख देंगे सिर्फ माथे पे, शरीर छोड़ने के समय भी यदि प्रसन्न हो हाथ रख देंगे सारा कुछ पूर्ण हो जाएगा। अगर पूछे उस समय क्या दिख रहा है, राधा कृष्ण भी दिखेंगे, ब्रजधाम भी दिखेगा, हमारा सिद्ध स्वरूप में हम सेवा करते भी हम पाएंगे, पूरा ब्रज हमारे सामने स्फुरित हो जाएगा। गुरुजन एक स्थान पर रहते रहते वहां पे हाथ रख सकते हैं, उनके लिए कोई कठिनाई थोड़ी ना, तो सब जगह व्याप्त है ही है, परंतु क्या सबके साथ ऐसा होता है? नहीं, कुछ के साथ ही होता है, किनके साथ? जो हृदय स्पर्शी सेवा कर पाए, और जिनका आखिरी जन्म है, जो कि यहां से सीधा अपने मंजरी स्वरूप में जन्म लेंगे भवन वृंदावन में प्रथमतः, ऐसे संतों का संग, ऐसे संतों की जो कृपा है वो प्राप्त हो जाए, तो समझो सब कुछ प्राप्त हो गया, सब कुछ प्राप्त हो गया। जिस मात्रा में हमारा गुरु और वैष्णवों का हृदय पिघल जाए हमारे प्रति, उसी मात्रा में ही हमारी अग्रगति होती है भक्ति के अंदर, अन्यथा दूसरा और कोई उपाय है नहीं। और यही बात जो है वर्णन आती है आदि प्राण में, श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन से कहते हैं, नामे भक्त जना पार्था मे भक्त जनास्ते जना भक्तांश्नांच ते भक्तास्ते मे भक्त तमा मता, अर्थात हे अर्जुन, जो लोग केवल मेरे भक्त हैं वे मेरे भक्त नहीं हैं। अर्जुन कह रहे हैं जो मेरे भक्त हैं वो मेरे भक्त नहीं है, आपके भक्त हैं आपके भक्त नहीं है वो, तो फिर आपके भक्त हैं कौन? शिव जी के भगव के भक्त हैं, गणेश जी के भगव के भक्त हैं, नहीं 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 नहीं, मेरे भक्त तो मेरे भक्त नहीं है, परंतु जो मेरे भक्तों के भक्त हैं वे ही मेरे श्रेष्ठ भक्त हैं। जो मेरे भक्तों के भक्त हैं, श्री कृष्ण अर्जुन को स्वयं कह रहे हैं कि वो ही मेरे वास्तविक भक्त हैं। क्या हमने नहीं पढ़ा ये श्लोक? पढ़ा। की रूपे पाई वो सेवा, क्या हमने नहीं करी प्रार्थना की? करी। पर क्या हमारे हृदय में स्फुरित कोई नहीं हुई? इसीलिए महसंग आवश्यक है कि जो गूढ़ार्थ हैं शास्त्रों के, पदों के, प्रार्थनाओं के, वो हमारे हृदय में भी आए। और जब तक आप खुद बताओ, जब तक ये हम ये महत्व तो नहीं समझे कि यही एकमात्र उपाय है, विकल्प नहीं है और कोई, तो क्या हम हृदय से ये प्रार्थनाएं कर सकते हैं? ऐसा नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं। आप बताओ, अगर आपने आज का ये सत्र नहीं सुना होता और आपने कभी भी किसी को सुना हो करते हुए प्रार्थनाएं आप करते कि रूपे पाई बो सेवा मोए दुराचार श्री गुरु वैष्णवे रति नाइलो आमार। क्या जब तक आपने कथा नहीं सुनी होती श्रीधर जी की, या ये व्याख्या नहीं सुनी होती, तो क्या आप ये हृदय से प्रार्थना कर सकते हो कि कैसे मुझे सेवा मिलेगी? मेरी व्रति ही नहीं हुई और क्या प्रयत्नशील हो गए गुरु और वैष्णव की सेवा में रति होने के लिए? जब तक ये महत्व नहीं समझ आएगा, हम प्रयत्नशील भी नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि हमें महत्व ज्ञान नहीं है कि जैसे पत्थर है, हीरा है, हमें मालूम नहीं। यहां तो समय और के हरे कृष्णा करते हैं, कैजुअली ले लेते हैं भक्तों को। ऐसा नहीं है। भक्त जो है एक प्रकार के पोस्ट ऑफिस है। पोस्ट ऑफिस किस क्या? गवर्नमेंट का। चिट्ठी डालो सीधा वहां पहुंच जाएगी। जो बॉक्स देखते हो लाल रंग का, अब तो पता नहीं आजकल होता है कि नहीं, जब हम छोटे थे तब तो होता था, आजकल तो कुरियर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, पता नहीं आजकल ये होता है कि नहीं। छोटा था लाल बॉक्स होता है, गली गली में होता था, हमने उनकी चिट्ठी डाली उसमें, तो सीधा पहुंच जाते हैं जहां पहुंचनी होते। उसी प्रकार से वैष्णव और गुरु की जब सेवा करते हैं मानव में, तो सीधा भगवान की, अलग से भगवान का भजन करने की आवश्यकता नहीं होती है, सीधा भगवान का भजन हो जाता है गुरु और वैष्णवों की सेवा से। जब वो कृपा करते हैं वैष्णव जन गुरु जन, तो हमें अपने जो सिद्ध देह है, हमारा जो भावमय देह है, उसको हम स्पर्श, उसका वास्तविक रूप से अनुभव कर पाते हैं। प्रेम, राधा रानी चरण में प्रेम क्या होता है, अभिन्न प्राण होना होता क्या है, तभी हम अनुभव कर पाते हैं। ये परम 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 आवश्यक है श्री गुरु और वैष्णव में रति होना। और आप बताएं, जब तक महात्मा नहीं पता होगा, तो क्या हम हृदय से जो प्रार्थनाएं करी गई हैं, क्या हम कर पाएंगे? और जैसे विलाप कुसुमांजलि में ही परिमल कणा व्याख्या है, हम प्रारंभ के श्लोकों में कुछ आपको बताते हैं। जैसे श्लोक नंबर आप 10 को लें, इसमें बताया गया है कि विश्व में हे राधा रानी, तुम्हें छोड़कर मेरा और कोई नहीं है। जब हम साधना करते हैं तो यह बात अवश्य ही अनुभव होगी कि राधा रानी के सिवा हमारा कोई नहीं है। और अगर यह अनुभव नहीं हो रहा तो अभीष्ट की ओर अग्रसर नहीं हुआ जाएगा। स्पष्ट बोल रहे हैं श्री बाबा जी कि राधा रानी को अग्रसर नहीं हुआ जाएगा जब तक हमें कोई अपना लगेगा कि मुझे तुम्हें छोड़कर विश्व मेरा कोई नहीं है। क्या हमें लगता है ऐसा? हमें तो लगता है हमारे बेटे अपने हैं, बेटी अपने, पति अपने हैं, पत्नी अपनी है। अगर कोई अपना लग रहा है तो इस मार्ग में अग्रसर नहीं हुआ जाएगा। अच्छा, ये तो सब अभी लग रहा है अपना, हाँ अग्रसर नहीं हो पाएंगे, क्लियर हो गया। अब कैसे हो? श्री गुरु वैष्णवे रति, यही एकमात्र उपाय है। और हृदय से फिर प्रार्थना हमें पद रोज करने चाहिए। अभी हृदय पूरी जिस मात्रा में महात्म्य समय आएगा, उसी मात्रा में हम ये पद हृदय से कर पाएंगे कि हमें भी हे वैष्णव ठाकुर, राधा रानी के सिवा हमारे को कोई भी अपना ना लगे, ऐसी कृपा करें, तो तभी हम ये प्रार्थना कर पाएंगे। जैसे कि प्रति जन्मे कौरी आशा चरणे रधुली, प्रति जन्मे कौरी आशा चरणे रधुली।
नरोत्तम करो दया आप नर बोली, नरोत्तम करो दया आप नर बोली।
प्रति जन्म में केवल एक ही आशा करता हूं, आपके चरणों की धूली बन जाऊं, आप मुझे अपना मान, बस ये मान एक बार बोल दो कि तुम मेरे अपने हो। यानी गन पॉइंट में जबरदस्ती से बुलवाया है कोई गुरु से, जैसे बोल दे महाराज जी आप बोल दो हम आपके अपने, ऐसे नहीं होता। ये मौन में घटती है घटना, आपको भी पता नहीं चलेगा आपका कल्याण हो गया, अन्यथा बोल बोल के। तो ये तो प्रेशर टैक्टिक से कम नहीं होता, मैसेज बोलना एक ही बात है। ये है कि हृदय से वो प्रसन्न हो जाए, मार्ग हमें पता चल गया। आप ये सोचो ये सत्र यदि ना होता, आपने ना सुना था, तो क्या कभी अनंत काल में ये प्रार्थना हृदय से कर सकते थे?
प्रति जन्म कौरी आशा चरण रधुली,
क्या हमारी आशा होगी प्रति, क्या हृदय से ये प्रार्थना निकल सकती है जब तक ये महात्मा ना समझ आया हो? संभव नहीं है, इसलिए महात्मा ज्ञान होना अति आवश्यक है।
नारोतमे करो दया आप नार बोली,
हमें क्या बोलना चाहिए?
ए अधमे करो दया आप नार बोली, ए अधमे करो दया आप नार बोली।
इस अधम पे दया करो हे ठाकुर, अपना एक बार बोल दो कि मैं तुम्हारा हूं। और वैसे ही जब तक ये हमें नहीं पता, तो ये प्रार्थनाएं करनी चाहिए रोज। जैसे हम भी सुबह जब हम सुबह उठते हैं, हालांकि 4 बजे तक 5 बजे तक शाम के बाद शाम तक समय नहीं होता, क्योंकि हमारे एक के बाद हम सब कुछ ना कुछ हमारा रहता है, तो सुबह से लेकर शाम तक वहां का समय नहीं है। क्या करते हो, किससे मिलते हो? नहीं, किससे नहीं मिलते, किसे फोन में बात करते हैं, किसी से नहीं करते। सुबह से शाम के 4-5 बजने के बाद फिर कुछ हम और कुछ विचार कर पाते हैं। ये भी नहीं 5 बजे हो गया जो सोचा था, वो तो खत्म ही नहीं, वो तो रात तक चलता ही रहेगा। और 5 बजे थोड़ा सा विचार का अवकाश। तो मंत्र स्मरण से पहले भी आधा पौना घंटा तो स्तोत्र प्रार्थनाएं करनी ही चाहिए, करनी ही चाहिए, सबको करनी चाहिए। नहीं तो हृदय से कैसे होगा मंत्र स्मरण या कुछ भी? वैष्णव के चरणों में विज्ञप्ति नहीं हुई, प्रणति नहीं हुई गुरु चरणों में। अब हमारे को अगर हमें ये महात्मा मालूम होगा, तो कैसे हम हृदय, पहले बात तो पद ही नहीं करेंगे, पद करेंगे हृदय से कैसे करेंगे? और ये किसके लिए लिखे गए हैं पद? मंजरी भाव के साधकों के लिए तो लिखे गए हैं। कई बार ये सोचते हैं इस कौन से, खासकर जब डिवोटी बाहर आते हैं कि हाँ हम बस बाहर आएंगे, हमसे कोई शरणागति और किसी बारे में कोई बात न करे, बस हम मंजरी बन जाए 2 दिन के अंदर, हम वृंदावन रह लेंगे, हम सब कुछ छोड़ के वृंदावन रह लेंगे, ब्रजवास कर लेंगे और बस हम मंजरी बन जाएंगे। ऐसा नहीं होता। हम तो 40-50 साल से लोगों को साधना कर देंगे, ट्रैक पे ही नहीं आए अभी तक गुरु वैष्णव की कृपा के, तो प्राप्ति तो छोड़ो और हृदय कठोर ही होता जाता है। और तो ये तो मंजरी लीला चिंतन तो सॉफ्ट हृदय में अनुस्फुरित होता है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितने साल बिताए हैं, आप कितने साल आपने सही मार्ग में बिताए, कितने समय आपने सही मार्ग में बिताया, उतनी अग्रगति है। ये सब किसके, किन साधकों के लिए, कौन से आचार्य, किन के आचार्य हैं? गौड़िया वैष्णव आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर, अनंत दास बाबा, किसके लिए लिख रहे हैं सब साधना? गौड़िया वैष्णवों के लिए। हम किसको देखते हैं करते हुए? ये हार्डली किसी को भी नहीं, किसी को पता ही नहीं है। अच्छा, ऐसा महत्व होता है जब पता ही नहीं है तो उसका पालन करना तो संभव ही नहीं है। अब जैसे एक और ये भजन है, ठाकुर वैष्णव गण कौरिये निवेदन मो बड़ो अधम दुराचार, मो बड़ो अधम दुराचार, मैं बहुत अधम हूं, मैं बहुत दुराचार हूं, मैं एक निवेदन कर रहा हूं हे वैष्णवगण। क्या केश धरी मोरे करो पार, मेरे बाल पकड़ के मुझे पार निकाल दो इस संसार सागर से, मेरे बाल पकड़ के मुझे संसार सागर से बाहर निकाल दो ये वैष्णव ठाकुर। क्या इस महात्मे के जाने बिना क्या हम ऐसी प्रार्थना कर सकते हैं? जब इस प्रकार की इस तरह की प्रार्थना नहीं होगी तो कृपा कैसे हमारे अंदर प्रवेश करेगी, आप खुद बताओ। विलाप को समझ भी हम ज्यादा आगे नहीं जा रहे, सिर्फ 10वें और 11 नंबर श्लोक आप देख सकते हैं, वर्णन आ रहा है तात्पर्य में कि भोजन शयन आदि समस्त देह देहिक चेष्टाओं को भजन के अंतर्गत कर लो, भजन के अंतर्गत कर लो समस्त शारीरिक चेष्टाओं को, चाहे वो खाना हो चाहे पीना हो चाहे सोना हो, क्योंकि सांसारिक व्यापार मन में आते ही उस वस्तु से राधा कृष्ण के चिंतन से वंचित हो जाओगे। सांसारिक बात मन में आई नहीं कि हम उस वस्तु से वंचित हो गए, तो इतना महत्वपूर्ण है कि सारे देहिक चेष्टाओं को भजन के अंतर्गत करना। और कैसी होंगी? ये केवल कृपा से होंगी, ये स्वयं से नहीं होगी। भजन जो है ये ऐसा खेत है जिसमें बोले बीज जो होते हैं, गुरु कृपा वैष्णव कृपा ही वो बीज होते हैं जो डलते हैं, उससे हमारा खेती होना संभव होता है, नहीं तो बैरन लैंड रह जाता है। बैरन लैंड बंजर भूमि रह जाती है। वही फ्रक्टिफाई होगा जो गुरु वैष्णव कृपा से जिस मात्रा में बीज का संचारण होगा, कृपा रूपी बीज का संचरण होगा, उसी मात्रा में हमारी अग्रगति होती है भजन के अंदर। वास्तव में जो गुरु वैष्णव की सेवा है, आप और ढंग से समझो कि गुरु और वैष्णव जो है वो भगवान की कृपा का ही मूर्तिमान स्वरूप है। तो गुरु वैष्णव की सेवा क्या है? गुरु वैष्णव तो कृपा के स्वरूप है, तो ये भगवान की कृपा की ही सेवा है। वास्तव में जब हम गुरु वैष्णव की सेवा करें, किसकी सेवा कर रहे हो? भगवान की कृपा की ही सेवा कर रहे हो। जब भगवान की कृपा को अप्रिशिएट करोगे कि हाँ ये कृपा हो गई, जब कृपा की सेवा करोगे तो और कृपा मिलेगी। वास्तव में दो की सेवा हो ही नहीं रही। भगवान और उनकी कृपा कोई भेद है क्या? सूर्य और सूर्य की किरणों में कोई भेद है क्या? नहीं। तो जब भगवान उनकी कृपा, भगवान उनके वैष्णव एक ही है, जब उनकी सेवा करेंगे तो और कृपा मिलेगी। और कृपा मिलने का क्या मतलब है? संसार से पूर्ण वैराग्य और भगवान में पूर्ण आसक्ति। स्वयं चेष्टा से हम इतने सालों से कर रहे हैं, आप जानते हैं, देख रहे हैं, स्वयं के प्रयास से अब तक संभव नहीं हो पाया, आगे भी संभव नहीं हो पाएगा। सही मार्ग पे लगेंगे तो ये संभव हो पाएगा। और कई बार देखा जाता है कि जो स्वयं से चेष्टा करते हैं, अकेले में श्री गुरु श्री वैष्णव श्री गुरु विराजमान है और अपने हिसाब से अलग से द्रोह करके भी भक्ति करने की चेष्टा करते हैं, तो ये तो पुष्टि मार्ग है, कृपा का मार्ग है, कृपा से ये भक्ति में पुष्ट हुआ जाता है। तो ये तो वैसे ही अहम इतना स्फुरित हो गया, तो भगवान तो ऐसा पूजक की ऐसे साधक निहारते भी नहीं है। जो कि श्री गुरु वैष्णव रति ना हो लो अमार, रति होना तो छोड़ो कि वह सोचा मैं स्वयं से कर लूंगा, विपरीत मार्ग, स्वयं से कर लूंगा। यस्या प्रसादात भगवत प्रसाद, उनकी कृपा से श्री गुरु की कृपा से ही हरि की कृपा मिलती है, परंतु कोई बात पढ़ के भी भीतर नहीं जाती। क्यों? क्योंकि अहम के कारण कुछ भी सूक्ष्म तत्व भीतर नहीं प्रवेश कर सकते। तो जब सूक्ष्म तत्व भी प्रवेश नहीं करेंगे तो ठाकुर जी के धाम में प्रवेश होना तो असंभव है। कितने वैष्णव जन, हम तो अनेक संप्रदायों के गुरुजनों से वार्ता हुई है, हर कोई यही कहते हैं कि कई जब भी उनसे कोई मिलने आता है कि किनके आश्रम में हुआ, तब उत्तर प्रांत में डांट के भगाते हैं। जैसे 20-30 साल ढोलने से भी ब्रज में भी अगर ढोलो तो अगर आश्रय में नहीं है तो बस समय ही बीत रहा है। तो फिर उसके कोई यही बोलते हैं हमेशा जो भी तत्वता स्थित है कि आश्रय में लेके भजन करो, आश्रय लैया सही बजे तारे कृष्ण नहीं तेजे, ये नहीं कि दीक्षा नहीं सही बजे, दीक्षा तो कितनों की हो जाती है, पर दीक्षा लेके भजन करने से तारे कृष्ण नहीं तेजे नहीं होता। कृष्ण उसको त्याग उसको नहीं करते जो वास्तविक रूप से गुरु वैष्णव कृपा का आश्रय लेके भजन करते, जान के कि जो होगा यहीं से होगा। गुरु और हमारी वृत्ति स्वयं भगवान में नहीं लगेगी। आप देखिए इतने सालों से कोशिश करें, ना लगी है ना किसी की भी नहीं लगती। ये गुरु वैश्य कृपा हमारी वृत्ति जो होती है सब घसीटती है, पहले से बलपूर्वक घसीटा जा रहा है। जो कृपा होती है तो हमारी वृत्ति बलपूर्वक सही मार्ग में घसीटी जाती है, राधा रानी के चरणों में घसीट के लाई जाती है। पर वो क्या होता है, जब वास्तव में प्रसन्न होते हैं गुरुजन व वैष्णव जन। देखिए शरीर का मैल तो धोया जा सकता है स्वयं से, पर मन का मैल स्वयं से धोना संभव नहीं है। मन का मैल कोई रिन सर्फ से नहीं धोया जा सकता, ये कृपा जन में ही है इन मैलों का धुलना। और ऐसा नहीं है कि हम सोचते हैं कि कोई वैष्णव का मतलब है कोई जटाधारी होंगे, कोई बाबा होंगे सिर्फ, नहीं। वैष्णव मतलब गृहस्थी भी हो सकते हैं, गृहस्थी भी होते हैं। जो अभी हमने आपको ये कथा बताई, जो पवा रहे थे वो भी गृहस्थी, जो पा रहे थे वो भी गृहस्थी थे, पर ठाकुर वैष्णव जन है। उसी प्रकार से कुंती महारानी है, महाप्रभु के अनेक पाठ अधिकांश जो है गृहस्थी है। तो गृहस्थ में रहकर भी भक्ति करी जा सकती है, पर कौन कर सकता है जो आश्रम में स्वयं हो। और जो खुद ही आश्रम में नहीं है तो अगर उनका संग कर रहे हैं, चाहे वो हमारा पत्नी क्यों ना हो, चाहे हमारे बच्चे क्यों ना हो, वो आश्रय जो वो जो संग जो है वो परम सत्संग है। जो स्वयं आश्रय में है अगर हम उसका संग करेंगे तो वह सत्संग कहलाता है। और एक वैष्णव थे, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, सिद्ध वैष्णव थे, सभी संप्रदाय में तो आदर था। उनके पास एक संत पहुंचे जो इस समय बहुत ही उन्हें मुक्त संत माना जाता है। जब वो सिद्ध संत के पास पहुंचे उन्होंने कहा एक ही बात हम तुम्हें कहेंगे, दर्शन करने के लिए गए थे, कि साधु संग मत करना। और हैरान हो गए, ये क्या बोल रहे हैं, मतलब कि इतना विपरीत हाल है इस समाज का इस समय कि हर कोई अपने हिसाब से भक्ति कर रहा। कहीं भी चले जाओ, शहरों में जाओ, धाम में जाओ, वृंदावन राधाकुंड बरसाना, कहीं भी चले जाओ अपने हिसाब से कर रहे, गुरु वैष्णव के आश्रय में रहकर भक्ति नहीं कर रहे। इसीलिए उन्होंने कहा कि वैष्णव संग मत करना। हाँ, संग करना तो बहुत जरूरी है, पर किनका, जिससे हमारा भक्ति का मार्ग पुष्ट हो। हमारा भक्ति मार्ग कैसे पुष्ट होगा, हमारे जो गुरुदेव हैं, जो वैष्णव जन हैं, उनके आश्रय में हम रहकर सही रूप से भजन, तो हमारा भक्ति का मार्ग पुष्ट होगा। जिस वातावरण में जो स्वयं रह रहे हैं वो क्या बोलेंगे, हम सही ऐसे ही होता है भजन, तो हम सोचेंगे हाँ ये भी एक प्रकार होता है, वो भी एक प्रकार होता होगा। ये प्रकार प्रपूर नहीं होता, भटकाव जो होता है अलग प्रकार का, प्रकार तो एक ही होता है भजन का। नरोत्तम जी सिद्ध संत बोल रहे की रूपे पाई वो सेवा, कैसी सेवा मिलेगी मुझे। ये मंजरी भाव के साधकों के लिए ही है, जब इस कौन से भी कुछ लोग नए आते हैं यहाँ पे भी जुड़ते सोते हैं तो हम फटाफट सब कुछ कर ले, फटाफट करने से कुछ नहीं होगा। हम 50 साल लोग कर रहे हैं कुछ नहीं होता, और यहाँ पे रहकर हम देखते हैं लेडीज हैं, गृहस्थियां हैं, और आश्रय जो लिया हुआ है, आखिरी जन्म है कितने लोगों का, यहाँ पे कर्म में कितने भक्तों का आखिरी जन्म है, गृहस्थियों का, लेडीज का भी। क्यों, एक कारण है जो महामंडलेश्वर भोगने के बाद भी संभव ना हो पाए वो गृहस्थियों में भी संभव है। कैसे, वो ट्रैक पे तो हो, ट्रैक क्या है, गुरु वैष्णव कृपा का आश्रय। जो स्वयं ही आश्रित नहीं है उनके संग से हम कैसे आश्रित हो सकते हैं, हम कैसे सही मार्ग पे आ सकते हैं। इसलिए उस संत ने बोला कि वैष्णव संग मत करना। हम महाप्रभु की लीला में पाते हैं कि जगदानंद पंडित वृंदावन जाना चाहते थे, तो महाप्रभु की इच्छा नहीं थी, वो अनेक प्रकार से मना करते थे, बहाना करते थे। तो एक बार उनको बोलना, कह रहे नहीं मेरे को जाना है, तो फिर उन्होंने एक बात बोली, किसको, जगदानंद पंडित को, जा रहे हो ना केवल सनातन गोस्वामी के संरक्षण में रहना, उनके अनुगत्य में रहना, किसी वैष्णव का संग नहीं करना और दूर से ही सबको प्रणाम करना। सोचो, ब्रजधाम जा रहे हैं तो भी क्या हुआ, किसी का संग मत करना, दूर से प्रणाम करना, इनके अनुगत्य में रहना सनातन गोस्वामी। तो महाप्रभु के लिए तो कम से कम सनातन गोस्वामी तो थे, हमारे को तो इस समय कोई नजर ही नहीं आते कि हम किसी को बोल सके, बहुत कठिन है। इसलिए वहां जाके दर्शन करके सेवा करके आना ही सबसे उचित है। और यही बात जो है रामचरित मानस में भी वर्णन आती है, भगवान राम स्वयं कह रहे हैं, भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिले जो होए संत अनुकूला। भक्ति बहुत सुख का मूल है, परंतु कैसे होती है भक्ति संभव? मिले जो है संत अनुकूल, जो अनुकूल संत मिल जाए। अनुकूल संत कौन है? जो हमारे गुरु और वैष्णव में रति को और प्रगाढ़ कर सके, ऐसे अनुकूल संत मिल जाए तो हमारी जो भक्ति है वर्धित होगी, अन्यथा वो मार्ग भी प्राप्त नहीं होगा जिससे हम भगवत राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट उपाय हैं, उपाय एक ही है, एकमात्र उपाय है गुरु वैष्णवों की सेवा। यही बाबा जी बता रहे हैं, कितने समय, एक समय हमारे पास समय नहीं, हम देख रहे हैं 5 बज गए, तो अभी हम तो खास नहीं मतलब ढंग से बता भी नहीं पाए, बहुत कुछ है बताने को, पर खास हम बता पाएंगे नहीं क्योंकि समय है नहीं। यहां तक बताया गया है बृहद नादीय पुराण के अंदर कि हरि भक्ति पराणंतु संगीनाम संग मात्रतः मुच्यते सर्व पापेभ्यो महापातक नाप अपि, कि हरि भक्ति पराण भक्तों की बात तो दूर छोड़ दें, जो उनके संगी भी हैं, जो महात्माओं के संगी हैं, जो उनके संगी भक्त भी हैं, उनके संग मात्र से भी जो महापापी महापातकी है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। तो वैष्णव जन श्री गुरु गुरु सानिध्य सबको प्राप्त होना संभव नहीं, पर जो उनके सानिध्य में है उनका सानिध्य भी प्राप्त हो जाए यदि, तो भयंकर से भयंकर पाप से सामान्य व्यक्ति मुक्त हो जाता है। तो इतना लाभ है। तो वैष्णव संग और वैष्णव कृपा के समान भक्ति में उन्नति के लिए कोई से श्रेष्ठ मार्ग नहीं है, और जो स्वयं अहम रूप से स्वयं भक्ति करते हैं अकेले अपने हिसाब से गुरु वैष्णव की कृपा के आश्रित रहे बिना, ऐसे लोग का संग जो है इससे बड़ा पॉइजन कोई नहीं है, क्योंकि यही तो जड़ से नष्ट कर देता है। हमारे के कुछ भक्त हैं, उन्होंने ऐसे किसी भक्त को देखा जो कि पहले थे और किसी कारण से अब विपरीत बुद्धिवश नहीं और ध्रुवयुक्त है, उनके दर्शन करने से उनको लगा कि हमने क्या गलत कार्य करे, आके कपड़ों समेत नहाए थे दोनों। ये बहुत अच्छा कार्य है कि जो स्वयं गुरु वैष्णव के आश्रित नहीं है उनका यदि दर्शन भी हो जाए तो कपड़ों समेत स्नान करना चाहिए, उनका स्नान करना या साथ में बैठना तो बहुत तो पॉइजन है, सबसे खराब असत्संग है। और सोचो जो कि स्वयं गुरु वैष्णव के आश्रय के भक्ति नहीं कर रहा, क्या वो इनसे कोई भजन कर सकता है? जैसे कि ये है प्रति जन्म कौरी आशा चरणे रधुली, प्रति जन्म चरणों की धूली की आशा जो करता है उसको वो प्राप्ति होती है संपत्ति, राधा कृष्ण के चरणों का प्रेम, और जो इस जीवन में विराजमान रहते हैं श्री गुरु श्री वैष्णव के उनके आश्रित नहीं हो रहा, तो ये क्या हृदय से कर सकता है? नहीं। क्या हृदय से कर सकता है यस्या प्रसादा भगवत प्रसादो? नहीं कर सकता। क्या हृदय से कर सकता है की रूपे पाई वो सेवा मोहित दुराचार? नहीं कर सकता। तो क्या वो व्यक्ति हृदय से कर सकता है गुरु मंत्र गुरु गायत्री? नहीं कर सकता। तो कर क्या सकता है व्यक्ति? और मानस चिंतन में तो सबसे पहले आप सुबह निशांत लीला चिंतन में सबसे पहले गुरु चरणों में जाके उनके चरण दाबते हैं, हम गुरु मंजरी के उनको जगाते हैं, उनको कुल्ला जगाते हैं, उनके चरण धोते हैं, उनको साफ करते सुखाते हैं चरणों कपड़ों से, तो कैसे करोगे जब गुरु चरणों में प्रेम और गुरु का आश्रय नहीं होगा? तो जो इस प्रकार के लोग हैं तो वो खुद मार्ग से पूर्ण रूप से विपरीत मार्ग पे तीव्र गति से चल रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति का तो दर्शन भी कभी हो जाए तो सवस्त्र स्नान करना ही एकमात्र विकल्प है। है तो काफी कुछ, परंतु अब शीघ्र से शीघ्र कुछ हम थोड़ी बात बताते ही हैं, फिर जैसे हरी इच्छा। भक्तों को जो संग प्राप्त हो गया है, आप ये सोच भी नहीं सकते कि हमने क्या क्या कार्य करे हैं जिससे ये संग प्राप्त हुआ है। जो भक्तों का संग प्राप्त हुआ है, आप सब जो हैं गुरुजनों का, कि कितनी तपस्याएं, कितने जप, कितने यज्ञ, कितने दान गाय का दान, सोने का दान, धन का दान, धाम यात्रा, परिक्रमाएं, वो तीर्थ का सेवन, वहां स्नान करना, वहां 100 बार स्नान करना, इतने सालों ये व्रत रखना, इतने सारे व्रत तपस्याएं जो करी हैं जन्मों जन्म से, एक जन्म में नहीं, जन्मों जन्म, उसका परिणाम ये है कि हमारे को भक्तों का संग मिल रहा है, भक्तों का संग में भी राधा रानी के भक्तों का सर्वोत्कृष्ट संग मिल रहा है, ये हमारी सारी तपस्याओं का फल हमें प्राप्त हो रहा है। बृहद नारदीय पुराण में वर्णन आया है कि सत्संग प्राप्यते पुंभी सुकृते पूर्व संचिताय, मतलब पूर्व संचित सुकृति के फल स्वरूप ही सत्संग मिलता है। मतलब आपने जो पूर्व में संचित करिए, जन्मों जन्मों में जो सुकृति जो संचित करिए जन्मों जन्मों में, उसका फल है क्या कि आपको सत्संग मिल गया। जन्मों जन्मों की सुकृति का फल है सत्संग मिल गया। तो जब सत्संग मिल गया है, आप ये सोचो आपने इतने सालों मेहनत करी, इस जीवन में ले लो बिजनेस किया, सब कुछ किया, बहुत मेहनत करी, बहुत पैसे कमाए, उसके बाद एक मान लो आपने घर खरीदना चाहा, वो घर मिल गया तो और घर की ओर देख नहीं रहे, घर की ओर ध्यान नहीं है आपका, तो कोई बुद्धिमान बोलेगा कि नहीं नहीं ये बुद्धिमत्ता नहीं है। उसी प्रकार से हमारी ही मेहनत के, हमारी यज्ञ तपस्याओं के, परिक्रमाओं के, दान के, पुण्यों के फल स्वरूप अंतिम जो फल प्राप्त हुआ है, हमें भक्तों का संग प्राप्त हो गया है। तो उस संग को हमें कितना कितना कद्र करना चाहिए, एक एक क्षण का उसका लाभ लेना चाहिए। अगर हम लाभ नहीं ले तो खुद ही अपने कमाए हुए धन को हम लात मार रहे हैं, उसका लाभ नहीं ले रहे। बिन सत्संग विवेक ना होए, राम कृपा बिना सुलभ ना सोए। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता कि केवल राधा रानी मेरी है, विवेक तो यही है संसार में कोई मेरा नहीं है, पर बिना सत्संग के ये विवेक होता नहीं है, नहीं होता बिना सत्संग के विवेक। और राम कृपा बिना सुलभ ना सोए, राम कृपा के बिना सत्संग प्राप्त नहीं होता किसी को। और भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिन सत्संग ना पाए प्राणी। भक्ति स्वतंत्र है, सुखों की खान है, पर बिन सत्संग ना पाए प्राणी, बिना सत्संग के प्राणी को ये प्राप्त नहीं होता ये भक्ति। तो सत्संग जो है ये हमारे ही कमाई से हमारे को प्राप्त हुआ है, और यदि हम इसकी कदर नहीं करेंगे, हमारे पे कृपा, राम कृपा बिना सुलभ ना सोए, तो कृपा हो चुकी है, शास्त्र वर्णन कर रहे कृपा हो चुकी है, तो यदि हम और कृपा चाहते हैं, इस कृपा का आदर करेंगे तो हमें और कृपा मिलेगी। यदि कृपा का निरादर करेंगे तो जो कृपा है वो वापस छीन ली जाएगी। तो इसलिए हमें जो हम पे जो कृपा होगी या साधु संग रूपी, उसको हमें कद्र करना चाहिए। इसमें और भी वर्णन आता है, पुण्य पुंज बिनो मिले नहीं संता। पुण्यों का पुंज पहाड़ जब न हो जाए तब तक संतों के दर्शन नहीं हो सकते, उनका उनसे वार्तालाप नहीं हो सकती, उनका दीक्षा प्राप्त नहीं हो सकती। तो ये बहुत बड़े पुण्यों का फल हमारे को प्राप्त हो गया है। अब हमें करना क्या है, संतों का संत प्राप्ति का एक ही फल है, भगवान में आसक्ति, संसार से विरक्ति। तो हम साधुओं का संग सही रूप से करें। और हमने जब ये बात करी थी, ये हम क्यों अचानक ये बात लेके आए हैं, ये हम इसलिए लेके आए हैं कि गुरु वैष्णव के आश्रय में होंगे, कृपा के आश्रित तो तब होंगे या संग करेंगे। हम कई बार पाते हैं कि भक्त लोग संग फोन पे पुरुषों में अधिकतर समस्या हमने देखी है। तो यदि आपकी अर्जित संपत्ति का आप आदर नहीं करोगे और भक्त संग भी नहीं करो, तो भक्त संग के बिना भक्त कृपा के कैसे वो कार्य करो जैसे भक्त कृपा प्राप्त होगी। गुरु कृपा, श्री गुरु कृपा, श्री वैष्णव कृपा कैसे प्राप्त होगी बिना संग के। और तो सबके फ्री के फोन है, अनलिमिटेड कॉल फ्री है, कोई किसी को भी बात कर सकते हैं और बात करते हैं। जैसे श्रीधर और श्रीधर जो सीता सहचरी कर रहे थे, कथ्यंत शमाम नित्य, घर गृहस्थी की बातें, खाने पीने की बातें, ये बहू बेटी सास दादी ये सब बातें नहीं करेंगे, मैं बीमार तुम बीमार ये सब बातें नहीं करनी। बात केवल करनी है भगवतीय वार्ता, जो हम माता जी से बात करते हैं कोई बात नहीं करते, फ्रैक्चर की कुछ भी भगवतीय वार्ता होती है, इसके रहित होकर बात करते हैं। और जब भी बात करें तो केवल उनसे करें जो कि कथ्यंतश्च माम नित्यम, जो हमारे को हमारे मार्ग में आगे बढ़ाए। हमारा मार्ग क्या है? गुरु वैष्णव के आश्रित रहना और भजन करना सही रूप से। तो उन्हीं का संग करना चाहिए जो खुद इस मार्ग में सही रूप से लगे हों। भक्त हमेशा हमने बताया दो प्रकार के होते हैं, एक कंप्लेनिंग डिवोटीज और एक कमिटेड डिवोटीज। जो कंप्लेन कर रहे हैं, हाँ इसमें ये इसमें वो हमारे यहां नहीं आए, उनको आना चाहिए था, उन्होंने ये नहीं किया वो नहीं किया, तो ये कंप्लेनिंग डिवोटी उनका संग तो कभी भी नहीं करना चाहिए, चाहे वो कर्म के अंदर हो या कर्म के बाहर हो। जो खुद गुरु वैष्णव के आश्रित है उनका संग नहीं करना चाहिए। हम तो कह रहे थे ना, जैसे धाम में भी हमें कोई नजर नहीं आता, हम तो कर्म में भी स्पष्ट कह रहे हैं हम आपके हितैषी हैं। तो सर्वश्रेष्ठ स्थान तो यहां पे है ही है, क्योंकि यहां पे प्रैक्टिकल तो कम से कम है कि कैसे सेवा होती है कैसे। परंतु फिर भी यदि कोई हो कंप्लेनिंग हो तो उनका संग कभी नहीं करना चाहिए। कमिटेड डिवोटी से केवल संग करना चाहिए, क्योंकि जो कंप्लेनिंग है तो इसका मतलब उसने उन्होंने आश्रय नहीं लिया, तो कंप्लेन कर रहे हैं उनका जिनका आश्रय लेना चाहिए था। विपरीत मार्ग में और कथ्यंतश्च माम नित्यम होना चाहिए, केवल भगवदीय वार्ता भगवत जनों की वार्ता ही होना चाहिए। और यदि हम साधु संग ही नहीं कर रहे तो हमारे अंदर लोभ है धन इत्यादि का, तो जब तक लोभ रहेगा साधु संघ का लोभ नहीं रहेगा, सांसारिक लोभ रहेगा, धन कमाने का लोभ, बिजनेस बढ़ाने का लोभ, तो ये तो लोभ तो सही जगह नौतंत्र साधु के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। लोभ साधु संघ हरि कथा, लोभ को लोभ जो है ग्रीड, वो साधु संघ करने में और हरि कथा करने में यूज होनी चाहिए, ना कि धन कमाने में। कितना खा लोगे, जितना हम खाते हैं थोड़ा ज्यादा ही खा लोगे उस या थोड़ा कम, तो हमारी आवश्यकताएं किसी की ज्यादा नहीं है, लोभ ज्यादा है, क्योंकि सही जगह लोभ का हमने इस्तेमाल नहीं किया। तो हमें जो लोभ है वो साधु संघ निरंतर दिन रात, अब तो कोविड है भक्तों का फिजिकली संग नहीं होता, कम से कम फोन पे तो होना चाहिए निरंतर। पर किस लिए? पहले भी हमने बोला था जब संग करें तो पहले ये शुभ संकल्प लें। कौन सा संकल्प? शुभ संकल्प कि मैं जो संग कर रहा हूं ये संग मैं कैजुअली बात नहीं करूंगा, बात कर लिया दो दिन बाद मुझे भी नहीं पता मैंने क्या बात करी थी, ये ऐसा संग नहीं, पत्थर पे लकीर की तरह वाला संग होना चाहिए। जो बात करें कि बात नहीं इसलिए कि मेरे पत्थर हृदय रूपी पत्थर पे लकीर आए, भगवती लकीर आए, पहले इस शुभ संग का, ये नहीं कि फोन घुमा दें कुछ नहीं खाली बैठा क्या इनको फोन घुमा दो, ना 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 ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आप बात करो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, मैं सांसारिक पारिवारिक कोई फालतू की बात नहीं करूंगी, वही बात करो जिससे आपके हृदय पे लकीर खींचे भगवती लकीर, किस प्रकार से मैं हरिनाम की ओर आश्रित हूं, किस प्रकार से मैं गुरुजनों की ओर आश्रित हूं। और वो नोट्स भी बनाने चाहिए बात करने के बाद, हमने आज जितने भी वर्षों में जिससे भी बात करी है हम एक डेट वाइज हम सब चीज लिख के रखी है, किसी छोटे से चुनाई से नए व्यक्ति से भी बात क्यों ना करें, अन्यथा बात नहीं करें। करें तो शुभ संकल्प पहले लें कि मैं जैसे फोन पे बात करने वाला हूं फोन पे बात करना वैसा नहीं रहूंगा, मैं बदलूंगा, इस दृढ़ निश्चय के साथ फोन पे बात करें। ऐसे नहीं कि फोन घुमा लिया और कुछ भगवत बात कर ली टाइम पास कर लिया, नहीं नहीं मैं बदलूंगा अपने आप को, मैं लिखूं मैं कहां गलत हूं, क्या चीज मुझे बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्या चीज मुझे करनी चाहिए, लिखें, ऑर्गेनाइज्ड हूं फोकस्ड हूं। और इस प्रकार से जब हम करेंगे तो हमारा जो लोभ है भौतिक चीजों से लोभ जो है वो जाएगा, और भौतिक चीजों से लोभ जाना बहुत जरूरी है। तो लोभ जो है जिसको सोचते क्या हो गया अगर लोभ है ग्रीड है, अरे बहुत खतरनाक है ये, श्री कृष्ण गीता में बता रहे हैं त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम, नरक के तीन द्वार हैं श्री कृष्ण कह रहे हैं, नाशनम आत्मनः, आत्मा का नाश करते हैं यानी कि हमारा अवनति करते हैं, क्या है वो तीन मार्ग, काम क्रोधस तथा लोभ, तस्मात एतत् त्रयम् त्यजेत्, इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए, काम क्रोध लोभ, काम का क्रोध का लोभ का, इनका त्याग करना चाहिए, नहीं तो ये हमें नरक के द्वार हैं। संसारी व्यक्ति का संग करना, ये भी आचार्यगण बताते हैं कि यदि एक पिंजरे में शेर के साथ रहना पड़ जाए तो शेर के साथ भले आप रह लो, पर सांसारिक व्यक्ति जो सांसारिक बातें करता हूं, आपके कोई भी रिश्तेदार हो, घर कोई भी संबंधी हो, दोस्त हो, स्कूल के फ्रेंड, कॉलेज के फ्रेंड पुराने हो, जो सांसारिक को भक्त नहीं हो, उनका संग कभी नहीं करना चाहिए। इससे अच्छा तो है कि शेर के साथ रह लो, एक बार ही मरोगे ना सिर्फ। सांसारिक लोगों के साथ जितने बार रहोगे उतनी बार जन्मों जन्मों मरोगे। और ये भी बताया गया कि एक पिंजरे में यदि आग लगी हो उसमें बैठ जाना ज्यादा अच्छा है बजाय कि संसारी व्यक्ति के साथ बैठने के, चाहे वो भाई हो, बहन हो, दीक्षित हो, कोई भी हो। अगर वो सही रूप से भक्ति नहीं कर रहा तो उसका संग कभी नहीं करना चाहिए। ये मानस में भी वर्णन आता है, जाके प्रिय न राम वैदेही तजी ताई कोटि वैरी संग यद्यपि परम समय ही। जाके प्रिय न राम वैदेही, जिनके सीताराम प्रिय नहीं है या हमारे जिनके राधा कृष्ण प्रिय नहीं है, चश्री ताही कोटि वैरी सम, उनके कोटि दुश्मनों के साथ हमें वैरी मान के उनको त्याग देना चाहिए। यद्यपि परम स्नेही, परम स्नेही जन हो, बेटा हो, बेटी हो, ये रिश्तेदार हो, दोस्त हो, सबसे बड़ा दुश्मन मान के त्याग देना चाहिए जो कि सीताराम जिनको प्रिय नहीं है या कि हमारे राधा कृष्ण जिनको प्रिय नहीं है, उनका संग नहीं करना चाहिए। ये शास्त्र असत्संग त्याग, ये तो महाप्रभु ही बोल रहे हैं। और जो बात जो भक्ति में नहीं है तो असत्संग ही है वो, चाहे किसी का भी संग हो। और उपदेशामृत में 11 श्लोक है, हम जल्दी जल्दी बोल रहे हैं क्योंकि समय नहीं है। उपदेशामृत में 11 श्लोक है, उसमें बताया गया है कि लौल्यम च षड्भिर् भक्ति विनश्यति, 6 प्रकार से भक्ति का नाश होता है। उसमें लौल्यम लोभ, ग्रीड, संसारिक चीजों का लोभ होना, बिजनेस बढ़ाना, पैसा बढ़ाना, ये इत्यादि। देखिए व्यापार हो या व्यवहार हो, दोनों शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध व्यवहार हो और शुद्ध व्यापार होना चाहिए, जिससे हमारे श्री कृष्ण प्रसन्न हो, श्री गुरु प्रसन्न हो, श्री वैष्णव प्रसन्न हो। उसी शुद्ध व्यवहार और शुद्ध व्यापार से हमारी उन्नति होती है। हम रूपानुगा हैं, रूप गोस्वामी ने ही बोला है कि 6 इन संसारिक चीजों में लोभ होने से भक्ति का षड्भिर् भक्ति विनश्यति, भक्ति का विनाश होता है। नाश भी नहीं बोल रहे, विनाश होता है लोभ से, संसारिक लोभ से। और असत्संग त्याग, ये कौन बोल रहे हैं? स्वयं महाप्रभु। तो हम क्या हैं? गौड़िया वैष्णव, महाप्रभु के अनुयायी। तो गौड़िया हैं, रूपानुगा मतलब रूप गोस्वामी के अनुयायी, वो बोल रहे हैं कि षड्भिर् भक्ति विनश्यति। तो रूपानुगा होना है या गौड़िया होना है, ये नहीं कि गुरुजी बोल रहे हैं, संत बोल रहे हैं कि संसारिक लोगों का संग ना करो। महाप्रभु बोल रहे हैं, रूप गोस्वामी बोल रहे हैं। यदि हम महाप्रभु के रूप गोस्वामी की बात नहीं मानेंगे तो हम काहे के गौड़िया, तो काहे के भगत। आप ये समझ लो, जो नॉन डिवोटीज हैं उनका संग ऐसे है कि राक्षस हैं बिना सींग के, सींगलेस राक्षस। वैसे सींग नहीं है, बस है राक्षस। तो बिल्कुल भी संग नहीं करना चाहिए, खासकर एकादशी के दिन तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, वैसे भी नहीं करना चाहिए, वो खा जाएंगे भक्ति को। और भक्त क्या होते हैं? दर्श परश अधनाश। भक्तों का संग, उनके दर्शन से पापों का नाश हो जाता है। और हमें रूप गोस्वामी कहते हैं कोई भी कीमत अदा करनी पड़े, कोई भी कीमत अदा करनी पड़े, किसी का संग हो, कोई भी काम हो, कुछ भी कीमत अदा करनी पड़े, हमें बदलाव करना चाहिए जीवन में यदि हम राधा कृष्ण की प्रेम सेवा चाहते हैं। कोई भी कीमत इतनी बड़ी नहीं है जो कि राधा कृष्ण की प्रेम सेवा हमें प्राप्त होने में, कोई भी चीज अगर बैरी है, कोई भी चीज बाधक है, उसे हमें तुरंत त्याग देना चाहिए। किसी चीज की कोई वैल्यू नहीं है। हम आपको हृदय की बात बोल रहे हैं, हम इस संसार में कोई हमारे भाई इस समय सब छोड़ो और चले जाओ, हम एक सेकंड सब छोड़े कहीं पे भी जाने को बोल रहा, हमेशा हमेशा कोई समस्या नहीं। क्या करना है किसी भी चीज का, आप अपने आप क्या करना है किसी भी चीज का? रोटी नहीं मिलेगी तो हमारे पास आए, हम रोटी तो आपको खिला देंगे अगर भजन करना, बस रोटी खाओ भजन करो। नहीं तो जो भी शुद्ध रूप से व्यापार हो, व्यवहार हो, शांति से भजन करो। और मूल है कि गुरु वैष्णव कृपा से भजन होगा, परंतु जो गुरु वैष्णव कृपा है उसके लिए हम भजन में जब तक स्ट्रांग नहीं होंगे तो गुरु वैष्णव का हम हृदय से उनको प्रसन्न कर भी नहीं पाएंगे। तो जो वास्तव में भगवत प्राप्ति करना, ये हमारा जो सत्संग है भगवत प्राप्ति के लिए, जो वास्तव में भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं उनको बेसिक चीजें तो फॉलो करनी चाहिए। उसके बिना तो गुरु वैष्णव की कृपा तो छोड़ो मार्ग पे भी नहीं चल सकते। कम से कम 2 घंटे जप और 1 घंटा शास्त्रों का अध्ययन करना ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो। 2 घंटे जप रोज, चाहे पेपर हो, शादी हो। एक हम भक्त जानते हो कि स्वयं की शादी का भी उन्होंने पूरे अपना 2 घंटे जप किया था दिन का और अध्ययन भी किया था। हम तो छोटी छोटी बातों में अगर जप और अध्ययन को सीरियसली नहीं लेंगे तो शक्ति ही नहीं मिलेगी जिससे हम गुरु वैष्णव को प्रसन्न कर पाए। उसके लिए शक्ति चाहिए, आध्यात्मिक शक्ति से उनको प्रसन्न कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि भजन छोड़ के नहीं प्रसन्न करने को हम बोल रहे हैं, हम होलसम डाइट की बात कर रहे हैं। जप करो, अध्ययन करो, साथ में गुरु, और जब अध्ययन करो उनके आश्रम की कृपा की याचना करते हुए कि आपकी कृपा से ही शुद्ध भजन हो पाएगा। कम से कम 2 घंटे जप और 1 घंटे अध्ययन कम से कम होना चाहिए, कम से कम। और सोना जो है, मतलब हमने तो कई महानुभाव को देखा कि 8-8 घंटे भी कोई सो सकता है। हम तो सोच भी नहीं सकते कि ये मतलब कोई सपना भी कैसे ले सकता है 8 घंटे सोने का, पर वास्तविकता है। कोई बूढ़े बुजुर्ग नहीं, मतलब देखिए आप किसी भी बड़े पॉलिटिशियन का जीवन देख लीजिए, बड़े एक्टर का जीवन देख लीजिए, अच्छे संतों का जीवन देख लीजिए, कोई भी मटेरियली या स्पिरिचुअली सक्सेसफुल व्यक्ति कोई किसी क्षेत्र का भी वो ज्यादा सोने वाला नहीं होता। मतलब अगर हम ज्यादा सो रहे हैं, 8-8 घंटे सो रहे हैं और नॉर्मल हेल्थ के बावजूद हम 8-8 घंटे सो रहे हैं तो जो थोड़े बीमार हो जाओगे तो शायद 10-12 घंटे सो गए। तो 10-12 घंटे सोना मतलब तो मंजरी भाव के साथ तो कुंभकर्ण भाव की साधना होगी, क्यों कुंभकर्ण बन जाएंगे किसी दिन। सोना तो कम होना चाहिए, 5 जो यंग है 5-5.5 घंटे बहुत है। हमको बुखार होता है तो भी हम नहीं सोते इससे ज्यादा, क्यों हमारा पूरी दिनचर्या है। हम कैसे 4 बजे तक हम सब कुछ करेंगे तो और कौन करेगा। हम क्या ज्यादा सो लेते हैं, जब छोड़ देते हैं, अध्ययन छोड़ते हैं, बिल्कुल गलत है। एक ग्रंथ है इसका नाम है सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह, 372 नंबर श्लोक है। हित परिमित भोजी नित्यम एकांत सेवी स्वल्प निद्रा विहार। इसका मतलब है नियमित भोजन करने वाला, 2 यह सेहत, 3 बार अल्पाहार, इसके अन्यथा नहीं। ज्यादा समय तो 2 बार लेते हैं, कई लोग तो 1 बार लेते हैं, पर 3 बार से ज्यादा तो स्वप्न में भी नहीं लेना चाहिए। पर ये हमने सबने सुनी है बातें, हाँ हम बीच में भी लेते हैं, क्यों कि गुरु वैष्णव की कृपा का आश्रय नहीं ले, स्वयं से नहीं कर पा रहे। सुन भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, स्वयं से फिर भी फॉलो नहीं, क्यों नहीं कर पा रहे। गुरु वैष्णव से प्रार्थना करें कि मेरी भोजन से शक्ति हटाओ, 3 बार में अंतिम हो। और कई बार 3 बार को स्किप कर देना चाहिए, 2 बार हो सिर्फ। एक बार सुबह 10-11 बजे ले लिया, एक बार सुबह 5-6 बजे ले लिया, हो गया। अरे भाई भजनानंदी बनना है, भोजनानंदी नहीं बनना। और क्लियर बोला इसमें स्वल्प निद्रा विहार, स्व अल्प, अल्प होता है थोड़ा निद्रा, होता है अल्प निद्रा करो। ये क्या बोल रहे हैं ग्रंथ, स्व अल्प निद्रा विहार, अल्प में भी बहुत कम कर दो निद्रा और विहार। हम तो कम करने को यहां पर कह रहे हैं 5-5.5 घंटा, अंतिम अवस्था में बहुत मेहनत जिस दिन करियो उस दिन 6 घंटा, बहुत मेहनत जिस दिन करियो। तो बोले मैं बहुत पढ़ाई कर रहा हूं, अच्छा 2:30 बजे जाग रहा हूं, ठीक है 2:30 बजे आके 5 बजे उठ जाए तो कोई समस्या नहीं है, 2:30 बजे जाके पढ़ाई करो, नहीं तो समय से सो और सुबह समय से उठो। समय से उठे बिना ना कोई स्पिरिचुअली सक्सेसफुल हो सकता है, ना कोई मटेरियली सक्सेसफुल हो सकता है, ये सिर्फ बातें रह जाएंगी केवल। और नियमों पे कठोर होना है, जिस दिन अध्ययन नहीं, जिस दिन 2 घंटे जप नहीं, उस दिन भोजन नहीं। और भोजन कितनी आसक्ति है हम सब जानते ही हैं, अपने आप भजन ठीक होगा जब भोजन पे कठोर, भोजन नहीं मतलब भोजन नहीं, भजन नहीं तो भोजन नहीं, इस पे कठोर होना होगा। और जो अध्ययन करना है वो 365 दिन साल में होना चाहिए, किंतु परंतु नहीं होना चाहिए किसी दिन भी, हर दिन करना है। कोई शादी हो, कोई मर रहा हो, कोई जी रहा हो, कोई फंक्शन हो, कुछ भी हो, हमने आज सुबह से हम इतना टाइट है, सब कुछ करना है, तो हमने जो अध्ययन करा है वो जो ये सब बोलने के अलावा करा है, हमारा अध्ययन अलग है। तो कुछ भी हो, जन्माष्टमी हो, कुछ भी हो, अध्ययन पूरा होना चाहिए। और जो हमारे भक्त हैं ये जब करेंगे, अध्ययन करेंगे, जप करेंगे, और गुरु साधु की वास्तविक, हमको ये देखना क्या कितना जेन्युइन हूं श्री गुरु और श्री वैष्णव की कृपा, कितना वास्तविक में आश्रित हूं या कितना सोशल वे में आश्रित हूं, जेन्युइनली कितना मैं आश्रित हूं, ये हमने देखना है। और एक 25-30 साल पुराने इस्कॉन के भक्त आए थे तो आश्रम में, तो उनको हमने एक ही बात बोली थी, 2 साल लगेंगे आपको यहां का एबीसीडी समझने में वास्तविक गौड़िया वैष्णव। क्योंकि होता क्या है कि जब बाहर निकल के आते हैं इन सोसाइटियों से, तो थोड़ा ज्ञान अभिमान होता है कि हमें भी मालूम है। बच्चे बहुत मेहनत करनी पड़ती है एबीसीडी समझने के लिए, अभी तो वो हटाना पड़ेगा जो सीखा हुआ है गलत, और बिना कृपा के आश्रित रहे कहीं भी रहे। हमने देखा कितने लोग वृंदावन में आए हैं ये सोसाइटियों से, 2-3 साल रहे और कोई उसका आता पता नहीं होता, क्यों? क्योंकि गुरु वैष्णव के आश्रित नहीं रहे ना शुरू से। और जब हम आश्रित रहेंगे तो हम वो प्रगति कर सकते हैं जो स्वयं के प्रयास से कभी संभव नहीं है। अब ये जो हमने प्रवचन बताया है, इसे हमारे जो प्रवचन है हम जानते हैं, अनेक संप्रदायों के लोग सुनते हैं, लोगों के फोन आते रहते हैं हमारे प्रचारकों के पास, परंतु आप सुन सकते हैं, हम प्रार्थना भी करेंगे आपकी कृपाओं की आप फॉलो करें, पर इसका फॉलो करना संभव थोड़ा कठिन है, क्योंकि एक वातावरण जब तक नहीं होता जहां ये चीजें फॉलो हो रही हो तो वो फॉलो कर पाना बहुत कठिन है। तो यहां पे जो आप कर्म में जो भक्त हैं, सबको पता है कि सर्व करा कैसे जाता है, तो सिर्फ जो आप सब भक्त हैं आपको सिर्फ ट्रांजिशन करना है, कहां से? सेवा से मनोमयी सेवा में। आप लोग ये सुन रहे हैं तुरंत समझ पा रहे हैं अधिकांश भक्त, हम जानते हैं, क्यों? क्योंकि आपका जो हृदय है वो मानस इतना पावन तो हो चुका है सेवा करके श्री गुरु श्री वैष्णव की, कि हाँ जो हम बोल रहे हैं वो समझ आएगा, ये जो हम बोल रहे हैं सबको समझ नहीं आएगा, सूक्ष्म तत्व है ना, उस प्रकार का मानस सेवा उन्मुख नहीं हुआ अभी तो समझ नहीं आएगा। आपका सिर्फ ट्रांजिशन पीरियड आई, जैसे कि नाम लेना और स्नेहयुक्त नाम लेना, उसी प्रकार सेवा करना और मनोमयी सेवा करना, अभी ट्रांजिशन पीरियड में जाना मनोमयी सेवा के अंदर, और मन से वाणी से शरीर से तीनों से सेवा करें। कभी ऐसा ना हो कि हमेशा ऐसा क्रिया करें मन से वाणी से कि वैष्णव हमसे प्रसन्न हो। ये जोर जोर की हंसना और बेफिजूल के मजाक करना और कैजुअल बात करना, तूतड़ा करना, प्रणाम ना करना, ये सही नहीं है। तो वाणी से अपनी गाड़ी स्वयं लेके जाए हर सेवा में, तो वैष्णव देखेंगे ये तो हमेशा सेवा में तत्पर रहते हैं, राधा इन की कृपा करो। एक भक्त थे, वो इतना भिड़े राधा रानी से महसूस करते, राधा 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 हस्त में रातों करते रहते थे, जो आसपास के लोग थे ना वो राधा रानी से प्रार्थना करने शुरू कर गए, हे राधा रानी आप हमें मिलो या ना मिलो इनको जरूर मिलो। तो जब प्रसन्न होते हैं ना वैष्णव तो उन्हें बोलना नहीं पड़ता कृपा करो, कृपा हो जाती है। उसके बाद हमारा आचरण ऐसा हो, गाड़ी है तो हम कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं हम कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं हम कर रहे हैं, उन्हें भी इनकी कोई जरूरत नहीं है, पर ये विनम्रता पूरा कृपा पाने के लिए सब कर रहे हैं। जब वास्तव में हम आश्रित होंगे सबको आपका आचरण स्पर्श करेगा और वो आचरण से कृपा हो जाएगी। जो दिन रात धाम में रहकर कृपा नहीं होगी वो आपके शोध आचरण से आप किसी भी स्थान में रहो वो स्थान धाम बन जाएगा, कि सेवा उन्मुख मानस ही तो धाम है। You are where your heart is. आप गुरु वैष्णव के आश्रित हो। आप होते हो, आपके घर में जो मेड काम करते हैं, जो कोई और काम करने वाले होते हैं, आप अपनी इच्छा से कभी उनको बिस्कुट दे दिया, कभी ड्रिंक दे दी, कभी सब्जी दे दी, क्योंकि आपके ज्यूरिस्डिक्शन में जो है वो दे सकते हो, तो आप प्रसन्न हो गए तो दे, सबको तो नहीं देते। उसी वजह से गुरु वैष्णव का ज्यूरिस्डिक्शन बहुत बड़ा है। वो क्या है? कृष्ण तुमा हृदय, कृष्ण सतत विश्राम, कृष्ण का वास स्थान है उनका हृदय। तो आपका ज्यूरिस्डिक्शन है एक सब्जी कटोरी ये देना, ये सब रोटी दे देना। जो संतों का जुड़े हैं वो कृष्ण दे सकते हैं, कृष्णा से तोमार, कृष्णा दीते पारो तोमार शक्ति आशे। तो किसी को भी कृष्ण, उनका ज्यूरिस्डिक्शन बहुत बड़ा है। बात सिर्फ ये है कि वो हृदय से प्रसन्न हो जाए, हृदय से प्रसन्न हो जाएंगे तो कुछ प्राप्त होना शेष नहीं रहेगा, कुछ भी प्राप्त होना शेष नहीं रहेगा। और जो भक्त हमारे यहां आश्रित हैं, यदि कोई दीक्षा होने के बाद भी कोई प्यास लेता है, या कोई चाय पीता है, या कोई पान खाता है, या कोई सिगरेट पीता है, तो निश्चित रूप से भगवान के पास दंड के अधिकारी होंगे। यदि कोई करता हो तो नहीं करना है, चाय पीना ये सब बिल्कुल त्याज्य है वैष्णवों के लिए, किसी भी वैष्णव को यह नहीं करना चाहिए, नहीं तो भगवान के द्वारा दंडित होना तय है। यदि कोई करता हो उसे तुरंत इसका त्याग करना चाहिए। वैष्णवों की सेवा से हमारा मन जो है ठाकुर जी में उस रूप से लग पाएगा जिस रूप से वास्तव में भगवान की प्राप्ति होती है। यदि हम ये बात समझ जाएं कि एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज इज इक्वल टू एसोसिएशन ऑफ कृष्णा, एसोसिएशन ऑफ राधा रानी, तो हम सही रूप से उनका संग कर पाएंगे और सही रूप से उनके संग का लाभ ले पाएंगे। यदि हमारे हृदय में गुरु वैष्णव की महिमा हृदय में निरंतर स्फुरित नहीं होगी तो हम उस मार्ग में सही रूप से अग्रगति नहीं कर पाएंगे जिसके लिए हम इतनी सेवा कर रहे हैं, इतना सब प्रयास कर रहे हैं। और जब हम वैष्णवों की सेवा करते हैं तो उससे अनेक हमें, लेकिन हम हर सेवा तो स्वयं तो नहीं कर पाते, पर जो वैष्णव सेवा करते हैं उससे हमें कई लाभ प्राप्त हो जाते हैं जो हम स्वयं सेवा भी नहीं कर पाते। जैसे कि अभी हमारे यहाँ ग्रंथों का प्रकाशन हो रहा है तो कई भक्तों ने आर्थिक रूप से उसमें मदद करी है। तो सोचिए जो इसमें सेवा किया भक्तों ने, तो पूरे विश्व में लोग हमारे जाने के बाद भी इन ग्रंथों को पढ़ पाएंगे, इससे लाभान्वित हो पाएंगे, उनका जीवन बदलेगा, तो कितनी कृपा प्राप्त होगी इससे। जिन्होंने धन से भी कराया, जिन्होंने पेन करा तो पेन लिखा, हमने लिखा मान लो, या भक्तों ने लिखा, या कंप्यूटर पे लिखा, दिन रात तीन तीन बजे तक जाके, चार चार बजे तक जाके बंगाली में अनुवाद, कितना कवर पेज बनाना, सुबह छह, कुछ दिन रात का भान नहीं भक्तों को, तो ये सेवा कर रहे हैं, तो जो उसमें सहयोग कर रहे हैं तो उनको कितना लाभ हो रहा है, हम बता रहे हैं कैसे लाभ होता है। जैसे आपने कोई वस्त्र दिया, किसने सूट दिया हुआ, किसने कोई कुर्ता धोती दिया, वो पहन रहे हैं, और जप झोली दी वो पहन के जप कर रहे हैं, वो कर हो रहे हैं, लाभ हमारे को हो रहा है, कितना लाभ होता है इससे। और किसी ने आपने भोजन दिया, किसी ने रोटी या किसी ने दाल, किसी ने भी कोई भोजन दिया, ड्राई फ्रूट दिया, कुछ उन्होंने वो पाया, उन पाने से उनका खून बना और वही खून बह रहा है, उसी खून से होने की वजह, शक्ति होने की वजह से जप कर रहे हैं, मंत्र स्मरण कर रहे हैं, योग पीठ कर रहे हैं, ग्रंथ लिख रहे हैं, प्रकाशन में जा रहे हैं, ये सेवा कर रहे हैं, वो सेवा कर रहे हैं, किसकी वजह से आपका उसमें सहयोग हो रहा है, तो हमें पता भी नहीं चला हमारा कितना एक व्यापक, हमने कितने भक्तों की सेवा करी, वो सारे भक्त जो जप कर रहे हैं, वो सारे भक्त जो योग पीठ कर रहे हैं, वो सारे भक्त जो मंत्र स्मरण कर रहे हैं, वो सारे भक्त जो सेवा कर रहे हैं, उन सारों की सेवा का फल एक व्यक्ति को बिना किए मिल रहा है, कितना लाभ। सचिव सबकी सेवा कर दी, पता क्या क्या किया, आपको पता नहीं चला मैं क्या किया, ये व्यापक यज्ञ कर दिया, सबका भजन आपको बिना किए प्राप्त होता है। किसी को चादर दे दी, वो चादर में बैठे हुए हैं, किसी को चादर हो गया, गजा कंबल, कुछ भी हो सकता है, स्वेटर हो सकता, कुछ भी जो किया किसी ने, तो वो ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, अपने उनके ड्यूटीज हैं, ग्रंथ लेखन कर रहे हैं, तो हमें तो नाच उठना चाहिए जब हमें सेवा का मौका मिलता है, नाच उठे कि हमारे सौभाग्य का उदय हो गया, हमें सेवा का मौका मिल गया। तो जो यहाँ पे कुछ साल रहा ही नहीं है दिल्ली में कर्म में, ये बात समझ भी नहीं आएगी कि सेवा वास्तव में होती क्या है, करना तो बहुत दूर की, वाता देखा ही नहीं है कभी सेवा, निरंतर सेवा कहते किसे हैं, उसके बाद मनोमय सेवा तो अलग अवस्था हो गई। जब तक ये नहीं होगा तो अभी तो सिर्फ एक्सेप्टेंस ऑफ नॉलेज है कि मुझे मंजरी बनना है, पर ईगरनेस, ईगरनेस नहीं आ सकती बिना इस प्रकार की सेवा के। तो जब भी सेवा प्राप्त हो तो बहुत बहुत धन्यवाद करें राधा रानी को कि आप अपने निजी जनों की सेवा दे रहे हैं। और यहाँ पे कितने भक्त हैं जिनका आखिरी जन्म है, तो आखिरी जन्म के भक्त जिनके दर्शन कुछ दिनों के लिए रह गए हैं इस पृथ्वी के व्यक्तियों के सामने, उनके दर्शन इतना दुर्लभ, उनकी सेवा मिल रही है, कुछ बाकी बकाया रह जाएगा क्या? राधा रानी से प्रार्थना करें और दिन रात इस कृपा की याचना करें, गुरु वैष्णव के आश्रित रहें, वास्तव में दीक्षा से नहीं होता केवल, वास्तव में आश्रय लेना। और जिनका विवाह नहीं हुआ तो उनका तो पूरा जीवन का एक एक श्वास गुरु के आश्रय में, गुरु के प्रसन्नता के अलावा बीतना ही नहीं चाहिए। जिनका विवाह नहीं हुआ, जो विवाहित है उनके पास भी लाइसेंस नहीं है कि इंद्रतीर्थी करते लोग, वास्तविक गृहस्थ बनना चाहिए, तो वे भी आश्रय में रहकर भजन करें। जो बिल्कुल सिंगल है, ब्रह्मचारी विशेषकर, तो गुरु प्रसन्नता के अलावा एक श्वास भी नहीं बीतनी चाहिए, एक श्वास भी, क्यों व्यर्थ करें श्वास को, गुरु प्रसन्नता के छोड़ के क्यों श्वास को व्यर्थ करा है? हमारी प्रत्येक श्वास केवल मनोमय सेवा के लिए होनी चाहिए, राधा रानी की, श्री गुरु की और श्री वैष्णव की। हम जप करें, अध्ययन करें और गुरु वैष्णव कृपा के आश्रित रहें, इन्हीं के होने से ये सब संभव हो पाएगा, आप सब ये पालन कर पाए, यही हमारी हार्दिक मनोकामना है, यही हमारी नवतंगा स्थापित के चरणों में प्रार्थना है। आप सब पे कृपा करें, आप खूब सेवा करते हैं, अब हम प्रार्थना करते हैं आपको मनोमय सेवा में भी लगाएं श्री गुरु श्री वैष्णव की, ताकि आपका पूर्ण रूप से कल्याण हो। निकाय गौर प्रेमानंद।